श्लोक नंबर 18 पृष्ठ संख्या 46 समय सा वर्तत यमान समनंदय सुमुखी गौतम अर्पितः महिमा अग्रहित कमनीय कंकणम अस्तव मूर्तिमानी व महोत्सव कर लक्ष्मण यम आर्याः यम आर्याः मांडवी इयम अपि वधू सुकृते सीता वत्स यमप्यपरा का वक्ष यम ईयवरा का लक्ष्मण अये उर्मिलाम प्रक्षिप्त्यार्या भवतु अन्यता संचारयामि प्रकाशकम् आर्ये दृश्यताम द्रष्टव्यम् एतत् अन्यम् च भगवानम् भार्गवम् सीता प्रजत् सा सम्भ्रमम् प्रकृपन् कम्पितास्मि राम ऋषे नमस्ते लक्ष्मण आर्ये पश्य आर्यमार्येण ब्रजत् इत्यलोक्ये व्यकृपन् राम संक्षेपम् अयि वत्सः बहुतरम् द्रष्टव्यम् मन्यतो दर्शय सीता स्नेह बहुमानम् नेवर्यम् सुष्ठु शोभसे आर्यपुत्रः एतेन विनयम् महात्मयेन लक्ष्मण एते वयम् अयोध्याम् प्राप्ताः हिन्दी कृष्णमुखी मानो यह वही समय है जब गौतम के पुत्र सुदानंद के द्वारा मेरे हाथ में अर्पित किया गया तथा धारण किए गए सुंदर शंकर से युक्त इस तुम्हारे हाथ में शरीरधारी महोत्सव के समान मुझे आनंदित किया था। लक्ष्मण सीता से यह द्रणिया आप है, यह भी भरत की पत्नी मांडवी पूजनिया है और यह शत्रुघ्न की पत्नी बधुसुकृति भी है। सीता वत्स वत्स और यह दूसरी स्त्री कौन है। लक्ष्मण मृत लज्जा तथा मुस्कुराहट के साथ मुख के बगल में हाथ से आड़ करके ब्रकटवन अरे आदरणीया ब्रकट सीता ब्रकटवन ब्रकट मेरी पत्नी ब्रकटवन उर्मिला को पूछ रही है। अच्छा ब्रकट इनका ध्यान ब्रकटवन दूसरी ओर आकर्षित करता हूँ प्रकट रूप से आइए यह दर्शन ये दृश्य देखिए भृगु के कल में कुल में उत्पन्न यह भगवान परशुराम है। सीता गड़बड़ाहट के साथ मैं कांप गई हूँ। राम ऋषि जी आपको प्रणाम है। लक्ष्मण आर्य देखिए यह परशुराम आर्य रामचंद्र के द्वारा ऐसा आधा कहने पर राम बात काट कर अरे भाई बहुत कुछ देखने योग्य है दूसरी ओर दिखलाओ। सीता स्नेह तथा अत्यंत आदर के साथ ध्यान से देखकर आर्य पुत्र इस विनय की अधिकता से आप अत्यधिक शोभित हो रहे हैं अर्थात यह विनय ही जो आपका भूषण आभूषण है। लक्ष्मण यह हम लोग अयोध्या में आ गए हैं। अन्वय कृष्णमुखी एसह सह समय वर्तते इव यत्र गौतम अर्पितः अगृहीत गृहीत कमनीयकरम् अयम् तव करः मूर्तिमान महोत्सवः इव माम समनंदकः। शब्दार्थ कृष्णमुखी हे सुंदर मुख वाली एसह यह सह वही समय समय काल वर्तते है इव सा मानो यत्र जब जिस समय में गौतम अर्पित गौतम के पुत्र सदानंद के द्वारा अर्पित किया गया अग्रहित कमनीय कंकणम धारण किए गए सुंदर कंकण से युक्त अयम इस तो तुम्हारे कर हाथ में मूर्तिमान शरीरधारी महोत्सव इव महोत्सव के समान इव मुझे मम मुझे समनंदयत आनंदित किया था। टीका समय की सुमुखी शोभनम मनोहरम मुखम आननम यस्याह सा सुमुखी तत्सम्बुद्धौ एषः चित्र दर्शन काले संप्रत्यनुभूयमानः सः पूर्वानुभूतः कालः समयः वर्तत इव आस्ते इव यत्र यस्मिन् काले गौतमार्पितः गौतमेन गौतममतेन पुरोधतः सतानन्देन अर्पितः प्रतिपादितः मम हस्ते समर्पितः इत्यर्थः अग्रहित इत्यादि अग्रहितम् परिहितम् कमनीयम् मनोहारी कंकणम् वलयम् वैवाहिक सूत्रम् इत्यर्थः येन तादृशः अयम् एषः मम पुरतो वर्तमान तौ भवत्या करः हस्तः मूर्तिमान शरीरी बहुत सैव महामह इव माम तव पतिम राम इत्यर्थः समनन्दयत नितरामानन्दितमकरोत् अत्र प्रक्षालंकारो मञ्जुभाषिणीं छन्दः टिप्पणी समयः स वर्तते प्रत्येक युवक तथा युवतियों को विवाह के समय एक अवर्णनीय आनंद की अनुभूति होती है। राम और सीता को भी कुछ ऐसी ही अनुभूति विवाह के समय हुई थी। आज चित्र देखकर राम को उसी का स्मरण हो रहा है, अतः प्रतीत हो रहा है कि मानो विवाह का वही समय फिर से आ गया है। कंकड़ कंकड़ शब्द के दो अर्थ होते हैं, मांगलिक सूत्र तथा सुवर्ण का कंकड़, किंतु यह कंकड़ का अर्थ मांगलिक सूत्र की ही अधिक उपयुक्त प्रतीत हो रहा है। इस श्लोक में वर्तत इव के क्रिया की तथा महोत्सव इव में गुण की उत्प्रेक्षा होने से उत्प्रेक्षा अलंकार तथा मंजुभाषणी छंद है। छंद का लक्षण सजसा जगौ च यदि मंजुभाषणी शब्दार्थ सजला नीतम लज्जा तथा मुस्कुराहट के साथ अपवार्य मुख के बगल में हाथ से आर करके एक ओर आर्या आक्रणिया सीता अन्यतः दूसरी ओर संचारयामी प्रेरित करता हूँ आकर्षित करता हूँ प्रकाशकम प्रकट रूप से द्रष्टव्यम दर्शनीय भार्गव भृगुपुत्र परशुराम टीका लक्ष्मण इति सलज्जा स्मितम लज्जा स्मितम इदस्वन चेति लज्जा स्मिते ताभ्याम सहितम यथा तथा सज्जल स्मितम इति पाठे तु लज्जया सह वर्तमानम सज्जलम सल्लजम तथा विधस्मिन् स्तमिन् सज्जकलम जस्मिन् कर्मणि तत अपवार्य करेण मुखमा इच्छाते इत्यर्थः तथा च साहित्य दर्पणे तद भवेद वादितम् रहस्य तु यद अन्यस्य परावृत्य प्रकाशय त्रितकाक करेणान्य अन्यम अपगत अंतराम कथन आर्या आत्रिया सीता अन्यतः अन्यस्मिन् विषये संचारयामि प्रेरयामि उर्मिला वृतांतं विस्मरा मयितुं भाव प्रकाशकम् प्रकटम् सर्वश्रयाम् सर्वश्राव्यम् प्रकाशकम् प्रकाशम् स्यात् इति लक्षणात् स्फुटम् अभिधीयते इत्यर्थ द्रष्टव्यम् दर्शनीयम् भार्गवः परशुरामः टिप्पणी उर्मीलाम् पृच्छति लक्ष्मण ने राम की पत्नी सीता तथा भरत की पत्नी मांडवी के लिए आर्या शब्द का प्रयोग किया है। राम और भरत लक्ष्मण से बड़े हैं, अतः उनकी पत्नी को आर्या कहा है। शत्रुघ्न लक्ष्मण से छोटे हैं, अतः उनकी पत्नी सुकृति को वधू कहा है। सीता तथा उर्मिला ये दोनों जनक शीर ध्वज की पुत्री और मांडवी एवं सुकृति उनके छोटे भाई कुशध्वज की कन्याएं थी। अपराध का यह सीता ने उर्मिला की ओर संकेत करके यह प्रश्न पूछा है। लक्ष्मण ने संकोचवश अपनी पत्नी का उल्लेख नहीं किया था, यहाँ भाभी का देवर के प्रति मजाक भी देखा जा सकता है। अपवार्य सामने स्थित व्यक्ति की ओर से मुंह फेर कर मानो वह सुन नहीं रहा है जो बात की जाती है उसे अपवारित कहते हैं। प्रकाशम जो बात सबको सुनाकर की जाती है उसे प्रकाशय कहते हैं। भार्गव भृगु प्लस अण प्लस विभक्ति कायम शब्दार्थ ससंभ्रम घबराहट के साथ आर्येण पूज्य राम के द्वारा साक्षेम बात काट कर बीच में रोकते हुए अन्यतः दूसरी ओर स्नेह सस्नेह बाहुमानम स्नेह तथा अत्यंत आदर के साथ विनय महात्म विनय से के महत्व से विनय की अधिकता से सीते की ससंभ्रम संभ्रमेण भयेन इत्यादि अजलित त्वरया सह यथा आर्येण पूज्येन रामेण वैष्णवम् वैष्णवम् शासनम् समारोप्य निगृहितः इति वाक्यस्य सह अयम् च भगवान् भार्गवः इति पूर्वेणान्वय सापेक्षः आक्षेपे स्वप्रशंसा सूचकम् लक्ष्मणवतः प्रति सिद्धे इत्यर्थः अन्यतः यः अन्यस्मिन् स्थले अन्यत्र ब्राह्मणस्य तत्रापि मुनिस्तत्रापि परशुरामस्य पराभवश्रमणस्य तथा सोत्कर्ष कथनं मनुषितम् इति निषेधः। अनेन रामस्य धीरोदात्तत्वं सूचितम् इति बोध्यम्। स्नेहं सम्बाहुमानं स्नेहश्च बहुमानश्च स्नेहबाहुमानौ ताभ्यां सहितं यथा तथा इति सस्नेहबाहुमानम्। सप्रेमादरं विनयं महात्मयेन विनयश्च नम्रतायाः प्राक् प्रदायहर्षितायाः महात्मयेन महिम्ना विनायति शयन इत्यर्थः। चित्तम् अयमार्येण लक्ष्मण कहना चाहते थे कि यह भगवान परशुराम आपके द्वारा पराजित किए गए हैं, किंतु अत्यंत विनम्र राम ने इस बात को पूरी न करने देने के लिए ही बीच में टोक कर कहा कि दूसरी चीजें दिखलाओ, इससे राम की उदात्त नायकता का सूचित होती है। स्नेह बहुमानम अद्वितीय बलशाली तथा अप्रतिम धनुर्धर राम की अत्यंत शालीनता देखकर सीता का स्नेह और आदर उनके प्रति अधिक बढ़ गया।
श्लोक नंबर 19 पृष्ठ संख्या 50।
राम
शास्त्रम स्मरामि
जीवत्सोता तपादेशु नयेदार परिग्रहे मातृभिश्चिन्त्यमानानां तेहीनो दिवसागता।
अन्वय
तातपादेषु जीवत्सु दारपरिग्रहे नवे मातृभिः चिन्त्यमानानां नहते दिवसाः गताः।
शब्दार्थ
तातः पादेषु पूज्य पिता के पितृचरण के जीवत्सु जीवित रहने पर दार परिग्रहे पत्नी ग्रहण के विवाह के नवे नवीन होने पर अचिर संपन्न होने पर मात्र ही माताओं के द्वारा चिंत्यमाना नाम चिंता किए जाते हुए न हम लोगों के ते वे दिवसाह दिन गताह बीत गए ही, इसका यहाँ किस कोई खास अर्थ नहीं है।
ठीक है जीवत स्वीति
तादपादेशु पितरी एकत्वम न प्रयुज्यत गुणावत्वमाई ईश्वरे इत्यादि वचनात गौरवात बहुवचनम। जीवत्सु वर्तमानेषु सत्सु दार परिग्रहे दाराणाम स्त्रीणाम परिग्रहे स्वीकारे विवाहे नवे नूतने अविचर संपन्न सदित्यर्थः पाल्यमानानाम न अस्माकं ते कुवानुभूता इत्यर्थ दिवसाः दिनानि गताः व्यतीताः तेषां पुनः प्राप्तेस्तु दुर्लभः सुदुर्लभेति भावः इति पादपुतौ अत्रानुष्ट छन्दः तथा समुच्चयालङ्कारः। टिप्पणी चिन्त्यमानानां कौसल्या आदि माताएं अपने नवविवाहित पुत्रों तथा नवागत वधुओं को अधिक से अधिक सुख पहुंचाने की बराबर चिंता किया करती थी। दिवसाह गताः वे दिन बीत गए जबकि पिता भी जीवित थे, माताएं हमारे मुख सुख की चिंता करती थी और हम लोग निश्चिंत थे। इस श्लोक में अनुसूक्त का समुच्च अलंकार है।
श्लोक नंबर 20 संख्या 52।
इयम् अपि तदा जानकी प्रतनु विरलैः प्रातनु मिलन मनोहर कुन्तलैर दर्शनम् मुकुलैर मुग्धा लोकम् शिशुर्दधति मुखम् ललित ललितैर योत्सनाः प्राऐह कृत्रिम् विभ्रमैः कृति मधुरैयम् वनाम् ज्ञे कुतूहलम् मङ्गकैः।
लक्ष्मण
एषः मन्थरा वृतान्तः।
राम
सत्त्वम् मन्यतो दर्शनम् देवी वैदेही।
हिंदी
यह सीता भी है उस समय अत्यंत सूक्ष्म तथा विरल ब्रकट मुख के ब्रकटबंध प्रांत भागो अर्थात कपोलों पर लहराते हुए सुंदर केशों से और कलियों के सदृश दांतों से सुंदर भोले भोले मुख को धारण करती हुई शैशव अवस्था वाली यह जानकी भी अत्यंत लुभावने चांदनी की तरह स्वाभाविक विलासों से युक्त कमनीय छोटे छोटे अंगों से भरे मेरे तथा माताओं के कुतूहल को उत्पन्न किया करती थी।
लक्ष्मण यह मंथरा का वृतांत है। राम प्रकट शीघ्रता से दूसरी ओर दिखलाते हुए वृतबंध हे देवी सीते अन्वय प्रतनु विरलैः प्रान्तोन्मील्यान् मनोहर कुन्तलैः च दर्शनम् मुकुलैः मुग्धालोकम् मुखम् ददति शिशुः यम् जानकी अपि ललित ललितैः ज्योत्सना प्रायैः अकृतिरिम् बिभ्रमे मधुरैः अङ्गकैः मे अम्बानाम् कुतूहलम् अकृत शब्दात् प्रतनु विरलैः अत्यन्त सूक्ष्म तथा धीरन् मिलन मधुरा कुंतलैः मुख के प्रांत भागो अर्थात कपोलों पर लहराते हुए सुंदर केशों से और दशन मुकुलैः कलियों के सदृश दांतों से मुग्धालोकम सुंदर दिखने वाले भोले भाले मुखम मुख को दधति धारण करती हुई शिशु शैशव अवस्था वाली बाला जानकी सीता अभी भी ललित ललितैः अत्यंत लुभावने ज्योत्सना प्रायैः चांदनी की तरह अकृत्रिम विभ्रमैः स्वाभाविक विलासों से युक्त मधुरैः कमनीय अंगकैः छोटे छोटे अंगों से मेरे अम्बाना माताओं के कुतूहल को उत्सुकता को अकृत उत्पन्न किया करती थी। प्रातनुरु विनयति त्वमपि तासां सुखहेतुरासीति भंगयंतरेण प्रतिपादयति प्रतनुति प्रतनु विरलः प्रतनूनि सूक्ष्माणि चतानि विरलानि च अनति निवीराणि तैः प्रान्तोन्मील मनोहर कुन्तलैः प्रान्तयोः मुख प्रान्तयोः कपोल योरित्यर्थ उन्मिलन्त स्फुरन्त मनोहराः सुचिराः कुन्तलाः केशाः तैः च तथा दशनमुकुलैः दशनाः दन्ताः मुकुलानीव कुण्डलम् आनीव तैः मुग्धा कोमलम् लोकम् मुग्धमनोहरा आलोकः दर्शनम् यस्य तथोक्तम् मुखम् आननम् दधति धारयन्ति शिशुः शैशवो यौवनान्तरम् वर्तमाना शिशुप्राया इत्यर्थः यम् जानकी अपीति गद्य भागाद्योज्यम् ललित ललितैः ललितेभ्यः मनोहरेभ्यः ललितैः मञ्जुलैः अतिशयेन मनोज्ञैः ज्योत्सना प्रायैः कौमुदी दशदृशैः लावण्य भरितैः इत्यर्थ अकृत्रिम् विभ्रमैः नास्ति कृत्रिम् असज विभ्रमः विलासः भङ्गी विशेषः इत्यर्थ येषु तथाविधे मधुरैः मनोजैः अङ्गकैः तनुतरैरङ्गै अल्पार्थे कन् मे मम अम्बानाम् मातॄणाम् कुतूहलम् दर्शनौत्सुक्यम् औत्सुक्यम् कौतुकम् इत्यर्थः अकृतम् अजनयत अत लुप्तोपमाश्रित्य मुच्चयश्च आलङ्कारः समुच्चयालङ्कारः हरिणीछन्दः टिप्पणी उन्मिलत उदपलस मिल प्लस सत्रिपलस विभक्तिरादि कार्यम् दधति भा प्लस सत्रिपलस इङ्गित विभक्ति कार्यम् अकृति विभ्रमैः उस समय सीता जी किशोरी थी अतः युवती की भांति उनके अंगों में बनावटी विलास तथा हाव भाव न थे। उनका सारी यांगिक क्रियाएं स्वाभाविक अतः मनोहर थी। इस श्लोक में लुप्तोपमा और समुच्चय अलंकार का संकर है। इसमें प्रयुक्त छंद है हरिणी छंद का लक्षण नमः नसमर सलाह गह सड़वय दे हरिय हरिणी मता है। शब्दार्थ मंथरा वृतांत मंथरा कैकई की दासी थी। उसका वृतांत सत्वरम वेग से शीघ्रता से अन्यतः दूसरी ओर दर्शयन दिखलाते हुए ठीक है लक्ष्मण इति मंथरा वृतांत मंथराया कैकई दासस्या वृतांत चरितम सत्वरम संवेगम अन्यतः अन्यत्र कैकई चरित संबलित मंथरा वृतांते कापहि कामुत्याम अधिकृत्यैव अन्यतः दृष्टिं मदादित्यर्थ दर्शन अवलोकयितुं प्रेरयन् टिप्पणी अन्यतो दर्शयन् श्री रामचंद्र जी मनोज सूजनता और शील के भंडार हैं। वे यह नहीं चाहते कि मंथरा के वृतांत के प्रसंग में विमाता कह गई कि वे बातें पुनः लोगों के समक्ष आए, जिनके परिणाम स्वरूप राम को वन में जाना पड़ा था। अतः वे सीता और लक्ष्मण को ध्यान को दूसरी ओर आकृष्ट करते हैं। श्लोक नंबर 21 पृष्ठ संख्या 54। इंगुदी पाद पहसो अयम सिंगे वेरे पुरे पुरा निषाद पतिना यत्तो स्निग्धेश नासित समागमः। लक्ष्मण विहरस्य विहस्य स्वगतम प्रकटवन् अये मध्यमाम्बु ब्रिगांतो अंतरित आर्येण सीता अहो एव जता संयं ब्रिंतांत्रम। अन्वय सिंगे वेरपुरे अयम सह इगुदिपादे अप्पह अस्ति अत्र यत्र पुरा स्निग्धेन विषादपतिनां समागमः आसीत्। श्रृंगेरपुर में यह वह इगुदी का पेड़ है जहाँ पहले मित्र निषाद राज गुह से मिलन हुआ था। लक्ष्मण हंसकर अपने आप आर्य अर्थात पूज्य राम के द्वारा मंजली माँ कैकेयी का वृतांत टाल दिया गया। सीता वो यह जटा बांधने का वृतांत है। शब्दार्थ श्रृंगेरपुरे श्रृंगेरपुरे में अयम यह सह वह इंगुदी पादप इंगुदी के पेड़ अस्थि है यत्र यह पुरा पहले स्निग्धेन स्नेह युक्त स्नेही मित्र निषाद पतिनाम निषाद राज गुह से समागम मिलन आदित हुआ था। टीका इंगुदिति श्रृंगेरपुरे सिंगवेरात्मये गुहस्य नगरे अयम एषः सः पूर्वदृष्ट इंगुदिपादपः तापसः तरुः इंगुदी तापतरुः इत्यमरः अस्तिति शेषः यसः यत्र यस्मिन् वृक्षप्रदेशे पुराः पूर्वं स्निग्धेन मित्रेण वयस्यः स्निग्धः समयः इत्यमरः निषादपतिनां निषादराजेन गुहेन सह इत्यर्थ समागम सम्मिलनम आसित जात। टिप्पणी सिंगे वेरपुरे निषादपति का यह नगर वर्तमान मिर्जापुर के समीप गंगा के तट पर बसा था। कुछ लोग इसे आज का छिनार मानते हैं। देखिए उत्तर रामचरित्र पर जीवानंद विद्यासागर की टीका। स्निग्धेन निषादराज रामचंद्र का परम भक्त तथा उत्कृष्ट मित्र था। स्निग्ध स्नेह प्लस कृत प्लस विभक्ति कार्यम समागम सम प्लस आ प्लस गम प्लस स्वय प्लस विभक्ति कार्यम इस श्लोक में प्रयुक्त छंद का नाम अनुष्टुप है। सबकार स्वागतम अपने आप मध्यमाम अमृतांतरम मंजलिमा का अमृतांत अंतंत छिपा दिया गया टाल दिया गया जटा संयम वृतांत जटा बांधने का वृतांत जटा बांधने की घटना। ठीक है लक्ष्मण इति मध्यमम अम्बा वृतांत मध्यमम भा कैकेयी तस्या वृतांत चरितम अंतरि अपवारित जटा संयम वृतांत जटा संयम जटा बंधन से वृतांत घटना। टिप्पणी लक्ष्मण इति स्वगतम स्वगत उस उक्ति को कहते हैं जहाँ की वक्ता सामने वर्तमान व्यक्तियों से मुंह फेर कर अपने आप बात करता है। मध्यमाम्बा वृतांत मंजली माँ कैकेयी ने जो राम को वन में भिजवाया था यह वृतांत जटा संयम राम और लक्ष्मण ने श्रृंग वेरपुर में भी अपनी जटाएं बांधी थी। संभवतः यह उन लोगों का जटा संयम का सर्वप्रथम कार्य था। श्लोक नंबर 22 लक्ष्मण पुत्र संक्रांत लक्ष्मी कैयदम कैयद बृहत्म घृतम बाल्ये तदारेण पुण्यमारण्य कवर्तम सीता एता प्रसन्न नूम सरिता भगवती भागीरथी। राम रघुकुल देवते नमस्ते हिंदी। लक्ष्मण पुत्रों को राजलक्ष्मी सौंप देने वाले अर्थात पुत्रों को राजलक्ष्मी सौंपने के अंतर वृद्ध इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं के द्वारा जो व्रत धारण किया गया वह पावन वानप्रस्थ व्रत आर्य के द्वारा बाल्यावस्था में ही धारण किया गया। सीता यह स्वच्छ और पावन जल वाली भगवती भागीरथी है। राम हे रघुकुल की देवता आपको नमस्कार हो। अन्वय पुत्र संग क्रांत लक्ष्मी कई वृद्धा को भी ज्ञात धृतम तत् पुण्यम आरण्य व्रतम आर्येण वाक्य धृतम। सबदार पुत्र संक्रांत लक्ष्मी कई पुत्रों को लक्ष्मी सौंप कर को भी वंशीय राजाओं के द्वारा यत जो धृतम व्रत धारण किया गया तत वह प्रिय पावन आर्यक व्रतम वानप्रस्थ व्रत आर्येण आर्य के द्वारा बाल्य बाल्यावस्था में ही धृतम धारण किया गया। ठीक है लक्ष्मण इति पुत्र संक्रांत लक्ष्मी कई पुत्रेषु सुतेषु संक्रांता आश्रय शैथिल्याद स्वयं एवागता संगते इत्यर्थः पुत्रान इत्यर्थः लक्ष्मी श्री एसाम तथा भूतैः लद्रितश्चेति कप वृद्धेश्वाकुभि वृद्धाश्च तूर्यावस्थानापनाश्च ते इक्ष्वाकुवः इक्ष्वाकु कुलोद्गताः राजानस्तैः यद् यद्व्रतम् धृतम् स्वीकारितम् तादृशी इत्यर्थ पुण्यम पावनम अरण्यक व्रतम अरण्ये भवाः अरण्यकाः सन्यासिन तेषां व्रतम नियमः वैशाखन प्रत्यम इत्यर्थ स आर्येण पूज्येन रामेण बाल्ये संसदे एवेति शेषः धृतम स्वीकृतम अनुष्ठितम इत्यर्थ उपभूत राज्य रैक्षा कुलोदगतैः राजहिग गलिते शरीरे जगद्वर प्रस्थान रूप व्रतमागृहीतम ततु आर्येण रामेण नवे वयस्यैव धृतम इति भाव अत्यत्र अनुष्टुप छन्दस्तथा निदर्शना बिना विभानयोः भावनयोः शंकरालंकारः। टिप्पणी पुत्र संक्रांत लक्ष्मी कई इक्ष्वाकु में उत्पन्न होने वाले राजा वृद्धावस्था में राजभार का अपने पुत्र के ऊपर रखकर मुनि व्रत धारण का कर अरण्य में चले जाया करते हैं। चौथे पन नृपकानंद जाही संक्रांत सम प्लस क्रम प्लस कत प्लस समासाधिकारी राजलक्ष्मी अपने आप इक्ष्वाकु कुल के वृद्ध राजाओं के पुत्रों के पास चली जाया करती थी अथवा संक्रांत में अंतर भाव वितरण अर्थ मानकर पुत्र संक्रांताम संक्रामिका लक्ष्मी यही हो ऐसा अर्थ करना होगा। श्लोक में अनुष्टुप छंद है तथा निदर्शना एवं विभावना अलंकारों का शंकर अलंकार है। सरदार छन्न पुण्य सलीला स्वच्छ एवं पवित्र जल वाली भागीरथी राजा भगीरथ के द्वारा लाई गई गंगा। टीका सीतेति छन्न पुण्य सलीला छन्नम निर्मलम प्रियम पावनम सलीलम चलम यस्याः सा भगवती सर्वविद्यैश्च अर्य संपन्ना भागीरथी भागीरथ निपेणानिता स्वान पूर्व पुरुषान समुद्धम इत्यर्थ। टिप्पणी रघुकुल देवते रघुवंश के एक पुरुष सॉरी टिप्पणी रघुकुल देवते रघुवंश के एक पूर्व पुरुष भागीरथ घोर तपस्या करके गंगा को भूतल पर लाए थे अतः उन्हें रघुकुल की देवता कहा गया है। श्लोक नंबर 23 पृष्ठ संख्या 56 तुरग विषय व्यग्रानुर्विद सगराध्वरे कपिलम महर्षः महर्षात् पुरुष्टान पुरा प्रपिता महान अगणित तनुता पस्तप्त्वा तपांसि भगीरथो भगवती तौ स्पृष्टानभ्यश्चिरा उददीधरत। हिंदी हे भगवती गंगे सॉरी हे भगवती गंगे पूर्व काल में भगीरथ ने शारीरिक कष्टों की परवाह न करते हुए तपस्या करके सागर के अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र के द्वारा चुराए गए घोड़े को खोजने के संलग्न अतः पृथ्वी को खोदने वाले और क्रोध के कारण कपिल मुनि के तेज से भस्म हुए अपने प्रपितामह सागर के 60,000 पुत्रों का तुम्हें जल से स्पर्श कराकर चीरकाल के पश्चात उद्धार किया था। सात्वम्ब स्नुषायाम अरुंधती व सीतायाम शिवानृगायान लक्ष्मण एष भारद्वाज वेदितश्चित्र कूटयायिनीम वर्तमनि वनस्पति कालिंदी तटेतकः वटः श्यामो नाम मृगत राम सस्पृशम अवलोकयति मृगतम सीता स्मरति वा तम प्रदेशम आर्यपुत्रः राम अयि कथम विस्मरयते। हिंदी वह तू हे माता पुत्रवधु सीता के विषय में गुरुपत्नी अरुंधति की तरह मंगल की कामना करने वाली हो। लक्ष्मण यह भारद्वाज के द्वारा बतलाया गया प्रयाग से चित्रकूट को जाने वाले मार्ग पर श्याम नामक वट वृक्ष है। राम उत्कंठा पूर्वक देखते हैं। सीता क्या यारे पुत्र को उस स्थान की याद है। राम अरे वह स्थान भला कैसे भुलाया जा सकता है। अन्वय हे भगवती पुरा भगीरथ अगणित तनु ताप तपांसी तप्त्वा सगराध्वरे तुरग विषय व्यग्रान उर्विविधा च अमर्षात कपिलं मसा पुष्टान प्रपितामहान तव अरिवा स्पृष्टान चिरात उजधीरतः। सबदर हे भगवती गंगे पूरा पूर्व काल में भगीरथ ने अगणित तनुताप शारीरिक कष्ट की परवाह न करते हुए तपांसी तपस्या तप्त्वा तप करके सगराध्वरे सागर के यज्ञ ने तुरग विषय व्यग्रान इंद्र के द्वारा चुराए गए घोड़े को खोजने में संलग्न उर्विदा पृथ्वी को खोदने वाले और अमरसात क्रोध के कारण कपिल महसा कपिल मुनि के तेज से पुरुष्टान भस्म हुए प्रपितामहान अपने प्रपितामह सागर के 60,000 पुत्रों को तव तुम्हारे अग्नि जल से पुरुष्टान स्पर्श कराकर चिराग चीरकाल के पश्चात उद्धिधरत उधार किया था। टीका भगीरथी कथम रघुकुल देवेति विवृणोति तुरग्यत्यादि हे भगवती हे सर्वस्य संपन्ने गंगे पुरा पूर्वम भगीरथ दिलीप तनय युष आत्म पूर्वज अगणित तनुताप अगणित उपेक्षित अचिंतितो वा तन्वाह शरीरस्य तापः दुःखम् येन तादृशः सन अगणित तनुतापम् इति पाठेतु अगणित तनुतापः शरीरपतनम् शरीरध्वंसम् इति यावत् यस्मिन् तपः कर्मणि तद्यथा तथा तपांसि तप्त्वा तपश्चरित्वा सगराध्वरे सगरस्य अस्मत् पूर्वस् पुरुषस्य सगरस्य अध्वरे अस्म अधिके यज्ञे अश्वमेघस्य यज्ञ प्रसंगे इत्यर्थ तुरग विषय विग्रहान् तुरगस्य अस्य मेघीयस्य वाजिनः इन्द्रेणापहतस्य पातालम् प्राहितस्याश्चैत्यर्थ विजये विषये अन्वेषणो व्यग्रान् संलग्नान् अतः उर्विद यज्ञे दीक्षितस्य सगरस्याज्ञा उर्विम् पृथिवीम् विदन्ति विदारयति इति ते तथाविधा तथा च अमर्षात् कोपात् कपिल महसा कपिलस्य महामुनेः कपिलस्य महसा तेजसा पुनश्चान् भस्मसात् भूता नित्यर्थ प्रपितामहान् सगरस्य राज्ञः पत्न्याः सुमत्याः षष्टिसहस्रसंख्याकान् कन्यान् तनयान् इत्यर्थ अत्र रामायणकस्यादिकाण्ड आदिकाण्डकथा अनुसन्धेया तव भगवन्त्याः अग्निजलैः स्पृष्टान् सिञ्चितान् चिरात् चिराय सहस्रपरिवत्सरान् व्याप्येति यावत् उदतिरत उद्धारयामास अत्रोदात्तलङ्कारौ मृगम् च हरिणि। टिप्पणी उर्वी विदा उर्वी विदंती उर्वी विदस्तान उर्वी विद प्लस यप प्लस समासे भक्ति कार्यम सगराध्वरे राम के पूर्वज अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश सागर के सगर के दो पत्नियां थी सुमती और केसिनी। केसिनी का वंश प्रवर्तक एक पुत्र असमंजस था। सुमती 7,000 पुत्रों की जननी थी। राजा सगर के सौवा अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया। अश्वमेघ यज्ञ के पीछे पीछे सागर के 7,000 पुत्रों की विशाल वाहिनी चली। इंद्र को भय हुआ। उन्होंने सोचा सगर निर्विघ्न 100 अश्वमेघ पूरा कर मेरा इंद्रासन छीन लेगा। अतः विघ्न करने के लिए उन्होंने अश्वमेघ के अश्व को उठा कर पाताल में तपस्या रत मुनि कपिल मुनि के पास बांध दिया। स्वयं श्रृंगाल की भांति वहाँ से भाग गए। भूतल पर अश्व की कहीं पता न चला। अतः सागर के 7,000 पुत्रों ने पृथ्वी को खोद कर पाताल में प्रवेश किया। महर्षि के पास घोड़ा देखकर उन्हें चोर समझा। उनका अपमान किया। महर्षि को कोप हुआ। उन्हें श्राप देकर सागर पुत्रों को भस्म कर दिया। अश्व एवं अश्वरक्षिका वाहिनी की खोज करते हुए असमंजस का पुत्र अंशुमान पताल पहुंचा। भाइयों की दुर्दशा देखी अश्व लाकर सागर को सौंपा और सारी कथा कह सुनाई। फिर सागर ने अपना यज्ञ पूरा किया। अंशुमान का पुत्र दिलीप और उसका पुत्र भगीरथ हुआ। भगीरथ ही अपने प्रपितामहों को तारने के लिए गंगा को भूतल पर लाए। प्रपितामहन कपिल के कोप से भस्म सागर के पुत्र भगीरथ के प्रपितामह थे। इस श्लोक में उदात अलंकार और हरिणी छंद है। छंद का लक्षण नसमरसलाह सर्वेदैर हरिणी मता सपदार्थ स्नुषायाम पुत्रवधु सीता के विषय में शिवाध्यान मंगल की कामना करने वाली भारद्वाज के द्वारा बतलाया गया निर्दिष्ट चित्रकूट यानी चित्रकूट को जाने वाले वनस्पति वृक्ष कालिंदी तटे यमुना के तट पर टीका सात्वमिति सुषायाम बद्ध्वाह सीतायाम शिवानुध्यानम शिवस्य मंगलस्य अनुध्यानम अनुचिंतनम यया सादृशी मंगल कांक्षणित्यर्थ भारद्वाजेति भारद्वाजेन मुनीना भारद्वाजेन अवेदिति विज्ञापितः चित्रकूटयानि चित्रकूटम् यादिति चित्रकूटयायि तस्मिन् चित्रकूट पर्वताभिमुखेन गामिनि वर्तमनि मार्गे वनस्पति वृक्षः कालिंदी तटे कालिंद्याः यामुन्याः यमुनायाः तटे तीरे नंबर 24 पृष्ठ संख्या 58 पलसलु लिप्तमुग्धान्य ध्वंसम् पातचेदादशिथिलम् परिभम् रम्भैर दत्त संवाहनानि परिमृदितम् ऋणाले दुर्वल्या अङ्गकानि त्वम् मुरसि मम कृत्वा यत्र निर्दामवाप्ता। लक्ष्मण एषः विन्ध्यातविमुखे विराध संवादः सीता अलम् तावदेते न पश्यामि तावद आर्यपुत्रस्व हस्तधृत तालभृतान्तः पत्र निवारति तात अमात्मनु दक्षिणार अरण्य प्रवेशारम्भ। अन्वय यत्र त्वम् अद्य सम्पात खेदात् अलस लुल्लित मुग्धानि अशिथिल परिरम्भैः दत्त संवाहनानि परिमृदित मृणालि दुर्बलानि अलङ्गानि अङ्गकानि मम गुरुषि कृत्वा निर्दाम निद्राम अवाप्ता। शब्दार्थ यत्र जहाँ त्वं तुम अध्व संपात खेदात मार्ग में चलने की थकान के कारण अलस लुलित मुग्धानि अलसाए हुए कुम्हलाए हुए तथापि मनोहर अतिथिल परिरम्भै कस कर किए गए आलिंगनों से दत्त संवाहनानि दिया गया है संवाहन जिनमें ऐसे दबाए गए परिमृदित मृणाली दुर्बलानी पूर्णतया मसले गए कमल दंड के समान दुर्बल अंगकानी अंगों को मम मेरे उरसी वक्षस्थल पर कृत्वा रख कर निद्राम निद्रा को नींद को अवाप्ता प्राप्त हुई थी। टीका अविस्मरणे हेतुमया आलस्यति यत्र यस्मिन् प्रदेशे त्वं मम पत्नी सीता अध्वसंपात खेदात् अध्वनि मार्गे संपातेन गमयेन गमनेन यः खेदः क्लान्ति तस्मात् पथि चलेनेन संभूतात् श्रमादित्यर्थः असललुल्लितेति असलानि स्थितिम् नित्तरानि आलस्य युक्तानि लुल्लितानि क्लान्तानि शिथिलभूतानि इति यावत् तथापि मुग्धानि निसर्गतः एव मनोहारिणी अशिथिल परिरम्भैः अशिथिलैः गाढैः परिरम्भैः आलिङ्गनैः दत्तम् वितीर्णम् संवाहनम् मर्दनम् इभ्यस्तानि तथोक्तानि संवाहनेन मार्गचलनोद्भूत क्लान्तर परिपगताः भवत इति प्रसिद्धिः परिमृदे इति परिमृदिति विदलिका या मृडालिः सा इव दुर्बलानि कृशानि अङ्गानि गस्त्राणि एवम् अङ्गकानि सुकोमलङ्ग्यानि इत्यर्थः मम स्वबल्भस्य रामस्य इत्यर्थः कृत्वा विधाय इत्यर्थः निद्रां स्वावपम् आवाप्तः प्राप्तः अश्वप्रीत्यर्थः एतादृशः प्रदेशः कथम् हि विस्मर्यते इति वाक्यम् बीज्यम् अत्र लुप्तोपमालङ्कारणलयोः शङ्करालङ्कारः मालिनिः छन्दः टिप्पणी परिरम्भैः परि प्लस रम्भ प्लस भावे घय प्लस विभक्ति कार्यम् अत्र रम्भेरस ब्लीटो अनेन मूम भवति नूम भवति संवाहनानि सम् प्लस वह प्लस रिच प्लस ल्यूट प्लस विभक्ति कार्यम् अवाप्त औ प्लस आप प्लस ततः कर्तरी प्लस विभक्ति कार्यम् इस श्लोक में लुप्तोपमा एवं कारणमाला का शंकर अलंकार है। प्रस्तुत प्रयुक्त छंद का नाम मालिनी है। छंद का लक्षण न न म य य युते यम मालिनी भौगोलोक कैह भोगिलो कैह शब्दार्थ विंध्याटवी मुखे विंध्य वन के मुख अर्थात प्रवेश द्वार पर विंध्य संवाद विराध राक्षस की घटना कार्यपुत्र स्व हस्त धृताल ताल वृतांत पत्र निवा ऋतात्मम आर्यपुत्र श्री राम के द्वारा अपने हाथ से धारण किए गए ताल के पत्र रूपी छत्र के द्वारा निवारित किया गया है। धाम जिसमें ऐसे आत्मन अपने दक्षिणा अरण्य प्रवेशारम्भ दक्षिण के जंगलों में प्रवेश के प्रयास को टीका लक्ष्मण इति विंध्याटवी मुखे विंध्यस्य विंध्यशैलस्य या आटवी अरण्यानि तस्याः मुखं प्रारम्भ तस्मिन् आर्यपुत्र इत्यादि आर्यपुत्रेण स्वामिनां श्रीरामेण स्वहस्तेन स्वकरेण धृतं गृहीतं तालभृतं तालपत्रम् एव आतपत्रं छत्रं यस्मिंस्तथा विधम् आत्मनः स्वस्य दक्षिणारण्य प्रवेशारम्भ दक्षिणारण्य दक्षिणवने प्रवेशस्य गमनस्य आरम्भः व्यवसायः तं पश्याम इत्यवनम् अन्वयः इत्यन्वयः दक्षिणास्थ्यां दिशि वनप्रदेश प्रवेशकाल आतपं निवारयितुं मतिश्रेहेण रामो मम शिरसि तालपत्रस्य छत्रं विश्वाय धृतवानिति भावार्थः टिप्पणी विराध संवादः शम प्लस वद प्लस घय प्लस विभक्ति कार्यम विराध एक भयंकर नरभक्षी राक्षस था। विंध्यवन में प्रवेश करते हुए राम तथा लक्ष्मण को इसने पकड़ लिया, फिर राम ने इसका वध किया। तालवृंत राम सीता और लक्ष्मण के साथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे। सूर्य की किरणें प्रखर थी, सीता पसीना पसीना हो रही थी। राम ने ताल का एक पत्र तोड़ा, उसी को उसने छत्र की तरह सीता के सिर पर धारण किया था। किसी भी तरुणी के लिए वह समय अधिक सुखद होता है जबकि उसका प्राणवल्लभ उसकी स्वयं सेवा कर रहा हो। श्लोक नंबर 25। पृष्ठ संख्या 61 राम एतानि गिरिनिर्झरणि तटेषु वैशानाश्रित तरुणी तपोवनानि तेष्वातिथेय परमाः शम्मिनो भजन्ते नीवारमौष्टिपचन गृहिणो गृहाणि लक्ष्मण अयम् व्यलोकान लोको निवहनि अन्तरस्निगन्ध अपरिसरा अरण्यः परिण परिणद्भो गोदावरी मुखः रकन्दरः सन्ततम् विष्यन्दमानवेद् मेघमे दुरैकी नीलिमा जलस्थान मध्य गोगिरिः प्रस्थवर्णोः गिरिनिर्झरणी तटेषु वैखाशनशास्त्रित तरुणी एतानि तानि तपोवनानि सन्ति येषु आतिथ्येय परमाः निवारम् उष्टिपचनाः समिनः गृहिणः भजन्ते शब्दार्थ गिरिनिर्झरणी तटेषु पहाड़ियों के किनारे वयस्थान शास्त्रित तरुणी वानप्रस्थों के द्वारा आश्रित वृक्षों वाले एतानि ए तानि वे तपोवनानि तपोवन संति है येषु जिनमें अतिथे और परमाह अतिथियों के सत्कार में तत्पर निर्वारम उसकी पचनाह निवार तिन्नी की एक मुट्ठी पकाने वाले अर्थात एक मुट्ठी भर निवार पकाने वाले यस्मिनः शांतचित्त गृहिणः सपत्निक मुनि जन गृहाणी घरों को भजन्ते सेवितः सेवित करते हैं टीका दक्षिणारण्य वैभवम वर्णयति एतानैति गिरिनिर्झरणा तटेषु गिरिनिर्झरणी नाम पर्वतादिनाम तटेषु तीरेषु वैखासनाश्रित तरुणी वैखान शैवान प्रस्थैः आश्रिताः सेविताः तरवः वृक्षाः येषु एतानि इमानि चित्रे निर्मितानित्यर्थः तानि पूर्वदृष्टानि तपोवनानि तपो अरण्यानि सन्तीति क्रियाशेषः येषु येषु वनेषु आतिथ्येय परमाः आतिथ्येयम् अतिथिसत्कारः परमम् प्रधानम् येषाम् ते तादृशाः निवारम् उष्टिपचनाः निवारमम् उष्टि मुष्टि परिमितम् मुनिधान्यम् पचन्ति ये तथोक्ताः स्वल्पनिवारणाम् पाकमम् मात्रेण स्वपोषणम् कुर्वन्तः इत्यर्थः सामिनः शान्तियुक्ताः समद्यादिपेताः वितरागाः इत्यर्थः गृहिणः तदाराः सदाराः वनस्थास्तपस्विनः गृहाणी स्वसदनानि भजन्ते सेवन्ते अत्रोदात्तलङ्कारः वसन्तलिकाः छन्दः टिप्पणी वैखानशास्त्रित वैखानस्का प्रोक्तेन मार्गेण परवर्तते इति विखास लह प्लस अण प्लस विभक्ति कार्यम विखानस मुनि के द्वारा बतलाए गए मार्ग से चलने वाले यहाँ यह स्मरणीय है कि सर्वप्रथम विखानस मुनि के द्वारा ही वानप्रस्थों के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया था अतः वानप्रस्थ को स्वीकार करने वाले को वैखानस भी कहा जाता है। निवारण मुष्टि मुट्ठी भर निवारक को ही खाकर दिन व्यतीत करने वाले निवारक को बोलचाल की भाषा में किन्नी कहा जाता है। यह बिना जूते बोए ही जंगल में उन गड्ढों में पैदा होता है जिनमें कम से कम अश्विन या कार्तिक तक पानी रहता है। यह अति पवित्र धान्य है। गृहण गृहस्थ गृह प्लस मत्वार्थे इन प्लस विभक्ति कार्यम इस श्लोक में उदात्त अलंकार तथा वसंतालिका छंद है। छंद का लक्षण उक्ता वसंतालिका तमजा चौगह शब्दार्थ निबह निरंतरम स्निग्ध झील परिसराणि परिशुद्ध गोदावरी मुखर कंदर संघन वृक्ष समूह से पूर्णतया चिकने हरे भरे और श्यामल पर्यंत अर्थात छोर किनारा भोग वाले वनों से घिरी गोदावरी से शाब्दम्ययन झंकृत गुफाओं वाले संततम निरंतर अविश्यंदमान मेघदूत तरई की नीलिमा झरते हुए मेघों के कारण बढ़ी हुई नीलिमा जिसकी अर्थात ऐसा समृद्ध नीलिमा वाला जलस्थान मध्य वह जलस्थान के माध्यम से विद्यमान गृह पर्वत टीका लक्ष्मण अयम चित्रे पुरत दृश्यमान इत्यर्थ अविरत इत्यादि अविरला निवीणा ये अनोकहा अनसह सकतस्य अकं गतिं ध्वंतीति अथवा न ओकः अस्थानं ध्वंतीति अनोकः वृक्षाः तेषां निवाह समूहाः तैः निरन्तराः निरवकाशाः घनीभूताः इत्यर्थः स्निग्धाः चिक्कणाः नीलाः श्यामलाश्च परिसराः प्रान्तभूभागाः यस्य तथोक्तेन अरण्येन वनेन परिणद्वाः परिवेष्टेन विशालतामाप सम्पन्नाः यावा गोदावरी एतनाम्नाः प्रसिद्ध नदीका मुखराणि शब्दायमनानि गोदावरी नील पूरितानि इत्यर्थ कन्दराणि गुहा यस्य तादृशी सन्ततम् अनवरतम् अविश्य मन्दमन्य इत्यादि अविश्यन्द इत्यर्थ नीम श्यामलत्वम् यस्य तथोक्तम् जलस्थानमध्योग जलस्थानस्य एतनाम्नः प्रसिद्धस्यारण्यस्य मध्ये मध्यभागे गच्छतीति तिष्ठति ये तादृशी प्रस्तवर्णो नाम गिरिप्रस्तवर्णो पर्वतो वस्तुति शेष क्रियाशेषः टिप्पणी अविश्यन्दमाना अविप्लस्यन्द पुलस सानच पुलस विभक्ति कार्यम
श्लोक नंबर 26 पृष्ठ संख्या 62-63 राम स्मरसि सुतनु तस्मिन् पर्वते लक्षणेन प्रतिविहित सपर्याशुस्थ योस्तान्यहानि स्मरसि सरशनीराम तत्र गोदावरी वा स्मरसि च तदुपान्ते स्वाव योर्वर्तनानि
हिंदी राम हे सुंदरी उस पर्वत पर लक्ष्मण के द्वारा की गई सेवा से प्रसन्न चित्त हम दोनों के उन दिनों को याद करती हो अथवा वहाँ उस प्रस्तवरण पर्वत पर मधुर जल वाली गोदावरी के निकट याद करती हो और उस गोदावरी के तटों पर हम दोनों के व्यवहारों को अर्थात निवास क्रीड़ा तथा भ्रमण आदि को याद करती हो अन्वय हे सुतनु तस्मिन् पर्वते लक्ष्मणेन प्रतिविहित सपर्यासुस्थवयस्यो अवयोः तानि अहानि स्मरसि वा
शब्दार्थ
हे सुतनु हे सुंदरी तस्मिन् उस पर्वत पर्वते पर्वत पर लक्ष्मणेन लक्ष्मण के द्वारा प्रतिविहित सपर्यासुस्थयोः की गई सेवा से प्रसन्न चित अवयोः हम दोनों के तानि उन आहान दिनों को स्मरसि याद करती हो वा अथवा तत्र वहाँ अर्थात उस प्रस्तवरण पर्वत के निकट सरसिराम मधुर जल वाली गोदावरी 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 को स्मरसि याद करती हो च और तदुशांतेषु उस गोदावरी के तटों पर अवयो हम दोनों के वर्तमानि व्यवहारों अर्थात निवास क्रीड़ा तथा भ्रमण आदि को स्मरस याद करती हो टीका सुख प्रदाह पूर्वभन मनुभूता घटना इदानी स्मारयति स्मरतीति हेसुतनु शोभना ललिता तनु शरीरलता यस्याः सा सुतनु तत्सम्बुद्धौ तस्मिन् पर्वते प्रस्त्रवणस्नाम्नि गिग्रौ लक्ष्मणेन सुमित्रा पुत्रेण मम लघु भ्रात्र इत्यर्थः प्रतिविहित स्पर्यासुतौ प्रतिविहितया कृतया सपर्या सेवया स्वस्थयोः स्वस्थयो विगत श्रमयोः इत्यर्थः आवयोर इति यज्ञम् तानि पूर्वमनुभूतानि अहानि दीनानि स्मरसि स्मृति विषयमन्यसि किम् वा अथवा तत्र तस्य गिरेः समीपे सरशरीरामं सरसं मधुरं शीतलश्च नीलं जलं यस्याः तां तथोक्ताः स्यादुश्चलिलताम् इत्यर्थः गोदावरीं गोदावरीनाम्ना प्रसिद्धां सरितं स्मरसिं किं व्यासासि व्यायसि च अपि च तदान उपान्तेषु तस्याः गोदावर्याः उपान्तेषु प्रान्तभागेषु अवयोः सीतारामयोः इत्यर्थः वर्तमानि व्यवहारादिनि स्मरसिं किञ्च चिन्तयसि अत्र दीपकलङ्कारं च छंदस्तु मालिनी टिप्पणी प्रतिविहितः प्रति प्लस ही प्लस धा प्लस कतः प्लस विभक्ति कार्यम वर्तनानि बर्तन के अर्थ में भीतर वे सारे के सारे कार्य आते हैं जो प्रातः सैया छोड़ने से लेकर रात्रि सोने पर्यंत किए जाते हैं। वर्तनम वृत प्लस लीट प्लस विभक्ति कार्यम इस श्लोक में दीपक अलंकार तथा मालिनी छंद है। छंद का लक्षण न न मन न्यय युंतेयम मालिनी भोग भोगी लोक श्लोक नंबर 27 पृष्ठ संख्या 64 किंच किमपी किमपी मंदम मंदमाशयति योगा दवी रतील कपोलम जलपतरो क्रमेण अशिथिलम परिरंभा पितृकैः उष्णो रविरतयाम रात्रिरेव व्यंसितः। लक्ष्मण एष पंचवटयाम सुप्रणखादिवादः सीता हायार्यपुत्र एतावते दर्शनम। रामः अयि वियोगस्त्रस्ते चित्रम एतत सीता यथा तथा भवतु दुर्जनो असुखम उत्पादयति। राम अंत वर्तमान इव मे जनस्थान वृतांतः प्रतिभाति। हिंदी और भी परस्पर की समीपता के होने से अर्थात क्रमशः अधिक से अधिक सटते जाने से कपोलों को सटाकर धीरे धीरे अविर्वचनीय एवं बिना किसी क्रम के बातचीत करते हुए तथा गाढ़े अलिंगन के संलग्न एक एक बाहु वाले हम दोनों की नहीं मालूम पड़ रहे थे। बीतते हुए प्रहर जिसके ऐसी रात ही बीत गई थी हम लोगों की बातें नहीं। लक्ष्मण यह पंचवटी में सुपर्णखा के साथ विवाद का दृश्य है। सीता हाय आर्य पुत्र यही तक आपका दर्शन है। राम हे मेरे विरह से भयभीत सीते यह चित्र है न कि वास्तविकता। सीता कुछ भी कहो दुर्जन दुख उत्पन्न करता है। राम खेद है जनस्थान का वृतांत मुझे वर्तमान सा प्रतीत होता है। अन्वय आसती योगात अविरल अलित कपोलम मंदम मंदम किमपि किमपि अक्रमेण जलपतो अतिशील परिरंभव्या पितृ कई पितृ पित्रै कदोष्णोः अवयोः अविगत जामाह रात्रिम एव व्यंदसितः। शब्दार्थ आसती योगात परस्पर की समीपता से होने से अविरलित कपोलम व्यवधान रहित कपोल है जिस कर्म में इस कपाल प्रकार कपोलों को सटा कर मंदम मंदम धीरे धीरे किमपि किमपि कुछ भी जो कुछ अविर्वचनीय अक्रमेण असंबद्ध बिना किसी क्रम के जलपतो बातचीत करते हुए अतिथिल परिरंभ पितृकई दोषणो हो गाढ़े आलिंगन में संलग्न एक एक बाहु वाले अवयोह हम दोनों की अभिगत यामाह नहीं मालूम पड़ रहे थे। बीतते हुए प्रहर जिसके ऐसी रात ही रात एवं ही व्यंदसितः बीत गई थी। टीका किमपि किमपि ती आसती योगात आसती ही आस प्रभावः अति सन्निधाय इत्यर्थः तस्याः योगः संलग्नता तस्मात् अविरलित कपोलम अविरलितौ परस्परम संलग्नौ कपोलौ गंधौ यस्मिन् कर्मणि तद्यथाः स्यात्तथा मंदम मंदम शनैः शनैः किमपि किमपि यत्किञ्चित् अनिर्वचनीयम् इति यावत् अक्रमेण पौर्यापर्यम् रहितेन जल्पतो कथयतो अशिथिल्य इत्यादि अशिथिलः अतिदृढो यः परिरम्भ आलिंगन तस्मिन् व्यापृतः निरतः एकः एकः मम एकः एव च एकः कर्मव्यतिरेक द्युरुक्तिः दोः बाहुः योः तथोक्तयोः ग्रहालिङ्गनव्यहस्तभ्ययोः अविरतिः शेषेशः अविदितगतयाम अविदिताः अपरित्यागाः गताः व्यतीताः याम प्रहराः दौ याम प्रहरौ समौ इत्यमरः यस्याः सा तथोक्ता रात्रिः निशा एव व्यसरै व्यहरैः आसित विरताः प्रभाताः जाताः न तु अवलोकयम् इत्यर्थः जल्पितम् समाप्तम्। अत्र स्वभाव स्वभावोक्ति अलंकारो माननी च छंदः टिप्पणी किमपि किमपि। जब नवविवाहिता पत्नी पति स्वयं सैया पर मिलते हैं तो उस समय जो जो बातें होती है न तो उनका कोई विषय निर्धारित होता है और न ही उनका आनंद ही वर्णनीय है। इसी भाव को अभिव्यक्ति के लिए किमपि किमपि शब्द प्रयुक्त हुआ है। आस्ति आ प्लस सद प्लस कितिन प्लस विभक्ति कार्यम व्याप्रीतैकैक वि प्लस आ प्लस प्री व्यापारे प्लस कत प्लस विभक्ति कार्यम। लेते हुए करवट बदल कर प्रेमी प्रेमिका जब आलिंगन में जकड़ते हैं उस समय उन दोनों का ऊपर वाला एक एक ही हाथ व्यस्त होता है। रात्रिरेव व्यस्तः रात ही बीत गई न की बात। यदि एव के स्थान पर एवं पाठ माना जाए तब तो अर्थ होगा इस प्रकार अर्थात इन इन व्यापारों के साथ रात बीती, किंतु इस पाठ में वह गहरा भाव नहीं है जो एव के भीतर छिपा है। यौवन की उताल तरंगों से तरंगाई प्रेमी प्रेमिकाओं का एक सूत्र में बंधने के बाद श्रृंगार रस में कुछ इस प्रकार सराबोर हो जाते हैं कि उसका वर्णन ही संभव नहीं है। उस समय बात की बात में रात नहीं नहीं रातें बीतती हुई प्रतीत होती है। इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार तथा मानवीय छंद है। छंद का लक्षण पूर्ववत है। सुप्रणखा विवाद सुप्रणखा के साथ विवाद एतावत इतना ही यही तक वियोगस्त्रस्ते हे वीरह से भयभीत चीते दुर्जन दुष्ट व्यक्ति असुखम दुख हंत खेद है वर्तमान इव वर्तमान सा तत्कालिक टीका लक्ष्मण सुप्रणखा विवाद सुप्रणखया रावण भगिन्या सह बिना विवाद कलह एतावत एतावदेव काल पर्यन्तम वियोग त्रस्ते वियोग मयाम साकम विच्छेद तस्मा त्रस्ता भीता तत्सम्बुद्धौ दुर्जन दुष्ट असुखम दुखम हंत विच्छेद सूचकम अव्ययम एतत वर्तमान इव अभूयमान इव। टिप्पणी सुप्रणखा पूर्ववत नखा है यस्याः सा सुप्रणखा सुप की तरह विशाल नख वाली यह रावण की बहन थी। उन दिनों खरदूषण के साथ दंडकारण्य में रहा करती थी। एतावते दर्शनम सुप्रणखा के नाक कान कटने के बाद कुछ ही दिनों के भीतर रावण ने सीता का हरण किया था। अतः चित्र को देखकर सीता को भयवश भूतकाल की घटना वर्तमान से प्रतीत हो रही है। यही कारण है कि वे कह रही है बस यहीं तक आपका दर्शन है। श्लोक नंबर 28 पृष्ठ संख्या 66 लक्ष्मण अथेदम रक्षो भी कनक हरणे छद छद्म विधिनां तथा वृतम पापैर व्यर्थयति यथा छालितम अप्रे जनस्थाने सुन्ने विकल रणैयार्य चरितैः अपि ग्रावार उद्दित्यापि दलति वर्जस्य हृदयम् सीता शास्त्रम् आगतम् अहो दीनकर कुलानन्दम् एवम् अपि मम कारणात् कलान्तयासित। हिंदी लक्ष्मण इसके बाद अर्थात सुप्रणखा वृतांत के अनंतर पापी राक्षसों के द्वारा सुवर्ण मृग के छल के विधि से यह चित्र निर्दिष्ट सीता हरण रूप वैसा किया गया जो कि प्रतिकार कर दिए जाने पर भी व्यसित करता है। सुनसान जलस्थान दंडकारण्य में विकल इंद्रियों वाले पूज्य आपके विलाप आदि चरित्रों से पत्थर भी रो पड़ा था और वज्र का भी हृदय फट गया था। सीता आंसू बहाती हुई अपने आप ओह सूर्य वंश को आनंदित करने वाले राम इस तरह भी मेरे कारण दुखी हुए थे। लक्ष्मण रामम निवर्ण्यम साकुतम आर्यम किमते। लक्ष्मण राम को ध्यान में देखकर अभिप्राय पूर्वक आर्य यह क्या है। अन्वय अथ पापैः रक्षो भी कनक हरणे छद्म विद्धिना इदम् तथा वृतम यथा छालितम् अपि व्यर्थयति शून्यैः जनस्थाने विकलकरणैः आर्यचरितैः ग्रावा अपि रोदिति वज्रस्य अपि हृदयम् दलति। शब्दार्थ अथ तदनंतर इसके बाद सुप्रणखा वृतांत के अनंतर पापैः पापी रक्षो भी राक्षसों के द्वारा कनक हरणी छद्म विधि न सुवर्ण मृग के छल की विधि से इदम यह तथा वैसा उस तरह वृतम किया गया यथा जैसे कि जो कि छालितम प्रतिकार कर दिए जाने पर धो दिए जाने पर अपि भी व्यथयति व्यथित करता है कष्ट देता है शून्यैह सुनसान जलस्थाने जलस्थान दंडकारणे में विकल करणैह विकल इंद्रियों वाले आर्य चरितैह पूज्य आपके चरितों से ग्रावा पत्थर अभी भी रोदिति होता है वज्रस्य वज्र की अपि भी हृदयम हृदय दर की फट जाता है। टीका सीता हरणादि रूप वृतांतम स्मरादि तुमा अथैति यथ सूत्र रखा वृतांतांतरम पापैः पापं विद्यते येषामिति पापाः पाप प्रवणाः दूरात्मनं तैः रक्षोभिः राक्षसैः कनक इत्यादि कनकमयोः हरिणः कनकहरिणः सुवर्णमृगा एव छद्म कपटम् तस्याः विधिनानेन अनुष्ठामैत्यर्थ इदम् चित्रदृष्टम् सीता हरिणीम् इत्यर्थ तथा एवं हि तेन कारणेन व्रतम् आचारम् इत्यर्थ यथा यत् छालितम् मार्जितम् कृपम् प्रतीकारम् इत्यर्थ अपि च व्यथयति प्रणयति अस्मान् इति शेषः शून्यैः मानवसञ्चार रहिते जलस्थाने तन्नाम्नि दण्डकारण्यभागे विकलकरणैः विगताः अपगताः कला सामर्थ्यम् एतान् तानि तथोक्तानि स्वव्यापराणि समर्थानि कारणानि इन्द्रियाणि एषु तैः आर्यचरितैः आर्यस्य पूज्यस्य रामस्य चरितैः विलापादिष्टचेतैः चेष्टितैः ग्रावा पठाणाः ग्रावाणौ शेलपाः शैलपाषाणौ इत्यमरः अपि च रोदिति बिलपति तथा वज्रस्य अतिकठिनस्य कुलीशस्य अपि हृदयस्य वक्षः दलति स्फुटति तर्हि चेतनानां सचेतसाश्च प्राणिनां का कथा इति भावः अत्र अतिशयोक्ति अलङ्कारस्तथा शिखारणी छन्दः टिप्पणी व्रतम् व्यवहार किया गया व्रत प्लस कथा प्लस विभक्ति कार्यम् व्यथयति यथा छालितम् अपि बदला ले लिए जाने के अनंतर आज भी स्मरण करने पर हृदय को पीड़ित करता है छल प्लस ऋष प्लस कत प्लस विभक्ति कार्य की छालितम ग्रावारोदिति कविवर भवभूति ने करुण रस की अवतारणा में जो अनुपम सफलता अर्जित की है उसी की ओर यहाँ निर्देश है। वस्तुतः वे करुण को ही प्रधान रस मानते हैं एको रस करुण एवं उनका अभिप्राय यह है कि मेरा काव्य पत्थर को भी रुला देने वाला और वज्र के हृदय को भी फाड़ देने वाला है। इसमें संदेह नहीं कि उन्हें अपने इस उद्देश्य में पर्याप्त सफलता भी मिली है। सबदार शास्त्रम आंसुओं के साथ आंसू बहाती हुई आंखों में आंसू भरकर दिनकर कुलानंदम सूर्य वंश को आनंदित करने वाले क्लांत क्लेश युक्त दुखी ताकुतम अभिप्राय के साथ अभिप्राय पूर्वक टीका सत्येति सीतेति शास्त्रम अस्त्रेण नेत्रजलेन सहितम यथा तथा दिनकर कुलानंदम दीनम करोति दिनकर सूर्य तस्य कुलम वंशस्थ मानन्दिति तादृशः कलांत क्लिष्टः अतिसदुखैतः इत्यर्थः साकुतम अकुतेन अभिप्रायेण सहितम यथा तथा सात् अभिप्रायेणम् इत्यर्थ स्वयं बाहु वेगम हेतुम जनन्त्रापि रामसुखाद तस्य श्रवणम अभिप्राय एत एव अभिसा अभिप्रायम इत्युक्तम।
श्लोक नंबर 29 पृष्ठ संख्या 68। अयम् तावद वाष्पस्त्रुटितः एवमुक्ता मणिसरो विपर्श्यान्धारविरुदोल्ठते धरणीम् जर्जरकणः निरुद्धोप्यावेगः स्फुरद धरणास्फुटतया परेशा मुनेयो भवति चिरमाद्यात हृदयः। हिंदी। संप्रति धाराओं के रूप से बहता हुआ चूर चूर बूंदों वाला यह आंसू टूटी हुई मोतियों की लड़ी की तरह भूतल पर लुढ़क रहा है। बहुत दिनों से हृदय में कस कर भरा हुआ शोक का आवेग रोके जाने पर भी फड़कते हुए ओठ तथा नासापुट यानी नाक से दूसरे
का अनुमेय हो जाता है, अर्थात दूसरे लोगों के द्वारा अंदाज कर लिया जाता है। अन्वय तावत धारा विसर्पण जर्जर कर्ण अयम वाष्प त्रुटित मुक्तामणिसर इव धारणी लुठती क्षेरम अध्यात्म हृदय आवेग निरुद्ध अपि स्फुरद धरणासा मुफुटतया परेशाम उन्नयः भवति। शब्दार्थ तावत संप्रति अथवा यह अव्यय वाक्य को आरंभ करने के लिए प्रयुक्त होता है अथवा आरंभार्थक है। धारा भी धाराओं के रूप में विपर्शन बहता हुआ जर्जर कड़ह चूर चूर बूंदों वाला अयम यह वाष्प असु त्रुटित टूटी हुई मुक्ता मणिसर मोती की लड़ी की इव तरह धारणी भूतल पर लुठती लुढ़क रहा है चीरम बहुत दिनों से अध्यमात हृदय अपनी अधिकता से फुला दिया भर दिया है। हृदय को जिसने ऐसा हृदय में कसकर भरा हुआ आवेग शोक का आवेग निरुद्ध रोका हुआ रोके जाने पर अभी भी स्फुरंद धारणा सा फुटतया फड़कते हुए ओठ तथा नासापुट नाक से परेशान दूसरों का उन्नय अनुमेय अनुमान का विषय भवती हो जाता है। टीका कथम इदम ज्ञायते तदेव प्रकाशयितुम् आत्मनो अभिप्राय विज्ञातम् प्रकटयति अयम् इति तावत् सम्प्रति नूतनम् संगारम्भे वा धराभिः प्रवाहैः विसर्पण प्रसरण जर्जर कणः जर्जरा पतित्वा बहुशः खण्डिता कणाः बिन्धौ यस्यः तथोक्तम् अयम् एषः वाष्पः अश्रु त्रुटितः छिन्नसूत्रः मुक्तामणिसरः मुक्ता एव मणयः तेषां सरः सूत्रम् इव यथा धारणीम् भूमिम् लुठति नृपति चिरम् बहुकालम् बहोः कालद इत्यर्थः आद्याम हृदयः आद्यामातम् अपुरितम् तारितम् वा हृदयम् अन्तःकरणम् येन स तथोक्तम् आवेगः शोकवेगः निरुद्धः प्रयत्नोऽन्त संयम इति पुटम् प्रान्तभागः यस्य तस्य भावः तथा हेतुना ओष्ठस्य नासिकायाश्च स्फुरेणेन इत्यर्थः परेषाम् अन्येषाम् उन्नेयः अनुमेयः भवति जायते अत्रानुमानालङ्कारः छन्दग्ध शिखारिणि टिप्पणि त्रुटितः टुटे हुए त्रुट प्लस कत प्लस विभक्ति कार्यम विपर्शन फैलता हुआ बी प्लस श्री प्लस सर्त्री प्रथम एक वचने विभक्ति कार्यम लुंठति आँखों से आंसू बहे बूंदे वाले पर से होती है भूतल पर गिरी गिर गिर कर चूर्ण होती हो गई आंसुओं की सफेद सफेद बूंदे धवला मुक्त की माला की लड़ी जैसी लग रही थी। इस पुरधर भवती जब व्यक्ति का दुख दबाए दबता नहीं व्यक्ति उसे भीतर ही भीतर दबा देने का प्रयास करता है दुख रुदन आदि के रूप में फूट पड़ना चाहता है उस समय व्यक्ति का अधरोष्ठ और नाक का बगल वाला भाग फड़फड़ाने लगता है। व्यक्ति की यह अवस्था देखकर देखने वाला उसके हृदय में कोई महान कष्ट भरा हुआ है यह जान लेता है। इस श्लोक में अनुमान अलंकार तथा शिखारिणी छंद है। छंद का लक्षण रसई हरुद्रई छिन्न यम न स भ लाग शिखरणी। श्लोक नंबर 30 पृष्ठ संख्या 70 राम वत्स तत्कालम प्रियजन विप्रयोगा जन्म तीव्रो अपि प्रकृति किंवाक्षया विषोढ़ दुखाग्निर्महसि पुनर्विपस् पंचमानो हन्यमंत्रणम् इव वेदनाम करोति। सीता हाधिक हाधिक अहम् अप्यभूति भूमिगतेन रणरण केन आर्यपुत्र शून्यम् आत्मनम् पश्यामि लक्ष्मण स्वगतम् भवतु अन्यतः क्षीपामि। चित्र विलोक्य प्रकाशम् अथैमनमन्तरम् पुराणस्य तत्र भवतास्ता जटायुषः चरितः विक्रमोदाहरणम् सीता हातात् निर्व्यणस्ते पत्यन् स्नेहः हातात् राम हातात् कश्यप शकुन्तराय क्व न खलु पुनस्त्वादृशस्य महता स्तीर्थभूतस्य साधोः सम्भवः लक्ष्मण अयम् असौ जनस्थानस्य पश्चिमतः कुञ्जवा ग्राम दरकद्यवाः दिष्टितौ अधिष्ठितौ दण्डकारण्यभागः तदीदम् मृष्य मुकुवर्वते मतङ्गाश्रम पदम इयम् श्रमणा नाम सिद्धा सबलतापसि तदेत्थ पद्मा अभिधानम् पद्मसरः सीता यत्र कीलयार्यपुत्रेण दक्षीणाम् अर्षधीरत्वम् प्रयुक्तकण्ठम् प्ररुदितमासीत हिन्दी राम वत्स प्रियजन अर्थात सीता वियोग से उत्पन्न तीव्र भी शोकानल बदला लेने की भावना से उस समय सह लिया गया किंतु फिर मन में पकते हुए हृदय के मर्मस्थल के थोड़े के समान व्यथा कर रहा है सीता हाय धिक्कार है हाय धिक्कार है मैं भी पराकाष्ठा को प्राप्त हुई उत्काष्ठा के कारण अपने आप को आर्य पुत्र से रहित सी देख रही हूँ लक्ष्मण अपने आप अच्छा इनका ध्यान दूसरी ओर उत्कृष्ट करता हूँ चित्र देखकर प्रकट रूप से मनवंतर से भी प्राचीन उन पूजनीय पितृतुल्य जटाओ के चरित्र और पराक्रम का यह उदाहरण है सीता हाथात आपका संतान के प्रति प्यार पूर्ण रूप से निभाया गया अर्थात आपने संतान हम लोगों के प्रति पूर्णतया स्नेह तक प्रदर्शित किया राम हाथात काश्यप के गोत्र में उत्पन्न पक्षीराज फिर आपके समान महान तीर्थ स्वरूप साधु का जन्म कहाँ होता है लक्ष्मण वह वही पूर्व परिचित जनस्थान के पश्चिम में दरुक बंध में अधिष्ठित कुंजवान नामक दंडक वन का भाग है यह वही ऋष्यमुख पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम स्थान है और यह श्रमणा नाम वाली सिद्धि प्राप्त की हुई सबर जाति की तपस्विनी है यह वही पंपा नामक पद्म सरोवर है सीता जहाँ पर आर्य पुत्र क्रोध एवं धैर्य को खोकर ऊंचे स्वर में अर्थात चिल्ला चिल्ला कर रोए थे अन्वय प्रियजन विप्र योग जन्मा तीव्र अपि दुखाग्नि प्रतिकृति वंक्षाया तत्कालम विषोढ़ किंतु पुनः मनसि विपच्यमान हन्न मंत्रण इव वेदनाम करोति शब्दार्थ प्रियजनम इव प्रयोग जन्मा प्रियजन सीता के वियोग से उत्पन्न तीव्र तीव्र अपि भी दुखाग्नि शोकनल शोकानल दुख रूपी आग प्रकृति वाक्षया बदलों के भावना से तत्काल उस समय विषोढ़ सह लिया गया किंतु परंतु फिर चित्र दर्शनांतर के मननसी मन में विपक्षमान पकते हुए परिपक्व होता हुआ अन्य मंत्र हृदय के मर्म स्थल के थोड़े के ईव समान वेदनाम व्यथा को करोति कर रहा है ठीक है तत्कालम इति प्रियजन विप्रयोग जन्म प्रियजनेन प्रेम पात्रेण सीतया इत्यर्थ स विप्रयोग व्यह तस्मात् जन्म उत्पत्ति यस्य तादृश तीव्र दुर्विषः अपि च दुखाग्नि दुखमेवाह अग्नि अग्नि दुखाग्नि शोकानल प्रतिकृति वांछ्याः प्रतिकृतेः प्रतिकारस्य वैरानिर्यासस्येति यावत् वावाक्ष्या आकांक्षातया तत्कालम् सकालः तत्कालः कर्मधारय तम् तत्कालम् व्याप्यार्थे द्वितीया विषोढः कथम् अप्यनुभूतः किन्तु पुनः तदनन्तरः चित्रप्यादर्शनम् मत्प्रसंगेन मनंसि चेतंसि विपच्यमानः स्वयमेव विपाकम् प्राप्यमाणम् हन्यमम् हृदः अन्तःकरणस्य मर्मणि मर्म प्रदेशेः संजातो वर्ण इव स्फोटक इव वेदनाम् व्यथाम् करोति उपादयति तनोति इति पाठे तु विस्तारयति गेयः अत्रोपमालङ्कारः छन्दस्तु प्रहसुलि टिप्पणी प्रकृति वाच्य शत्रु रावण के बदसात बदला लेने की भावना से बदला लेने की भावना की व्यथा में किंतु व्यक्ति शत्रु के ऊपर क्रोध रहता है, अतः उस समय अपमान या वियोग आदि के कारण होने वाला दुख सरलता से बर्दाश्त कर लिया जाता है। विश्वरा वी प्लस सह प्लस कतः कर्मणि विभक्ति कार्यम विपक्ष्यमान वी प्लस पच प्लस कर्म कर्तरी प्लस यक प्लस सानच प्लस विभक्ति कार्यम। यह दुखाग्नि यह हनुमन प्रवण दोनों का विशेषण है, किंतु यहाँ व्रण का ही विशेषण मानना अधिक उपयुक्त होगा। इस श्लोक में उपमा तथा प्रसरणी छंद है। छंद का लक्षण त्रियासा भी मनोजरगा प्रसरणीय शब्दार्थ अति भूमि में पराकाष्ठा को अत्यंत अधिकता को गते न प्राप्त हुए रण रण के न उद्वेग के कारण उत्कंठा के कारण अन्य दूसरी ओर छिपाने ही प्रेरित करता हुआ आकृष्ट करता हूँ मनवंतर पुराणस्य मनवंतर में भी प्राचीन तत्र भवतः उन पूजनीय ठीक है सीतेति अतिभूमि अतिशयिता वा भूमिस्ताम अतिभूमि पराम काष्टाम गतेन प्राप्तेन रणरणकेन उद्वेगेन अन्यतः अस्मिन् विषये छिपामि संचारयामि प्रेरयाम इत्यर्थ मनवंत पुराणस्य अन्यो मनोर्मनवंतरम मनवंतरेण पुराण तस्य अतिप्राचीन इत्यर्थ तत्र भवतः पूज्यस्य तस्य जटायु विशेषणम एतत् टिप्पणी। आर्यपुत्र शून्यम इव सीता चित्र में रावण के द्वारा अपने हरण किए जाने तथा जटायु के साथ उसके युद्ध आदि को देखकर अतीत की अनुभूतियों में इस प्रकार लीन हो गई कि उन्हें यह प्रतीत होने लगा कि अब भी मैं प्राण प्रिय राम से वियुक्त ही हूँ। वस्तुतः उनकी इस अनुभूति में शीघ्र ही होने वाले राम के वियोग की छाया है झलक है। मनवंतर पुराणस्य मनु 14 है। एक मनु के राजकाल को मनवंतर कहते हैं। इस प्रकार 14 मनवंतर भी हैं। इस समय 7वां अर्थात वैवस्वत मनवंतर है। चारों युगों को एक चतुर्युग होता है। 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर 43,20,000 वर्ष का होता है। तत्र भवतः सामान्य वर्तमान अत्यंत पूज्य व्यक्ति के लिए अत्र भवान तथा परोक्ष व्यक्ति के लिए तत्र भवात कहा जाता है। यह शब्द अत्यंत आदर सूचित करने के लिए प्रयुक्त होता है। चरित्र विक्रमोदाहरणम सीता को हर कर ले जाते हुए रावण के साथ जटायु ने सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध कर अपनी जान दे दी थी। इसी बात की ओर यह संकेत है। शब्दार्थ निर्विढ़ निवाहा गया अत्यंत सुदृढ़ अपत्य स्नेह संतान के प्रति प्यार कश्यप कश्यप के गोत्र में उत्पन्न शकुंतराय पक्षीराज तीर्थभूतस्य तीर्थ स्वरूप पावन संभव उत्पत्ति जन्म टीका सीतेति निर्विढ़ यावज्जीवनम निर्विहित सुदृढ़ इति भाव अपत्य स्नेह अपत्येषु संतति सु स्नेह प्रेमातिशय अपत्य स्नेहस्य पराकाष्ठा प्रदर्शितेति भाव कश्यप कश्यप गोत्रोत्पन्नम शाकुंतराज्य शाकुंतलाम पक्षिणाम राजा पतितः संबुद्धौ ततोक्तः तीर्थभूतयः तीर्थस्वरूपस्य पावनम इत्यर्थः संभव उत्पत्तिः। टिप्पणी निर्व्यूढ़ निर्प्लस ही प्लस वह प्लस कत प्लस कर्मणि विभक्ति कार्यम तीर्थभूतस्य तीर्थ अपने पास आए हुए व्यक्तियों को पवित्र कर देता है। साधु भी अपने संपर्क में आए जनों को तार देता है। यही किसी सज्जन व्यक्ति का तीर्थभूत होना। शब्दार्थ धनुकबंधा अधिष्ठित धनुबंधक सिर विहीन शरीर वाले एक राक्षस ने अधिष्ठित अर्थात अपने अधिकार में किया हुआ सिद्धा तपस्या से सिद्धि को प्राप्त की हुई सबर तापसी सबर सा जाति की तपस्विनी वाक्षिणाम अर्ष धीरत्व क्रोध अमर्ष तथा धैर्य नष्ट हो गया। जिस कर्म में इस प्रकार से यह प्ररुदितम का क्रिया विशेषण है मुक्त कंठम गला फाड़ कर ऊंचे स्वर में टीका लक्ष्मण इति धनुकबंधान तिष्ठति अधिष्ठित धनुकबंधेन धनु नामकेन शिरोविहीनेन केनचि राक्षसेन तरु नाम यह कबंध निस्कंधर राक्षस तेन अधिष्ठित अध्यूषित स्वाधिकारे कृतः इत्यर्थ सिद्धा तपसः प्रापारं गताः समरतापसी तपस्विनी समरी वक्षिणीम् अर्थधारित्वम् अमर्षः क्रोधाधीरत्वं च धैर्य इत्यर्थमर्षः धीरत्वे विक्षीणे अपगते अमर्षधीरत्वे यस्मिन् कर्मणि तथा अथवा तद्यथा तथा प्रयुक्तम् कण्ठम् प्रयुक्तः उदारिति कण्ठ गालस्वरः यस्मिन् कर्मणि तद्यथा स्यात् तथा अच्युतेरित्यर्थः टिप्पणी पश्चिमतः पश्चिम की ओर यहाँ सप्तमी के अर्थ में तसिल प्रत्यय है दनुकबंधा दनुकबंध पहले विश्वास वसु नामक गंधर्व था स्थूल सिरा नामक महर्षि के श्राप से वह राक्षस हो गया। एक बार युद्ध में इंद्र ने उसके ऊपर वज्र से प्रहार किया फलतः उसका सिर उसके पेट में धस गया। तभी से उसे लोग दनुकबंध कहने लगे। दनुकबंध का अर्थ सिर विहीन राक्षस हम के दर्शन से इसकी मुक्ति हुई। ऋष्यमूषक इसी पर्वत पर सुग्रीव रहा करता था। मतंगाश्रम पदम मतंग ऋषि का यह पावन आश्रम पंपासर के पश्चिम की ओर था। श्रमणा यह समरवत समर जाति की एक सिद्धि तपस्विनी थी। समर स्त्री होने के कारण इसे समरी कहा गया है। यह मतंग ऋषि के शिष्यों की सेवा करती थी। राम के दर्शन से इसकी मुक्ति हुई। प्ररुदितम प्र प्लस रुद प्लस कत प्लस विभक्ति कार्यम श्लोक नंबर 31 पृष्ठ संख्या 74। राम देवी परम रमणीयम एतत् सरह एतस्मी नंद मदकल मल्लिकाक्ष पक्ष व्याघ्रत स्फुरद उरु दंडम पुंडरीका वाष्पारंभ परिपतनोद्गमनांतराले संदृष्टा कुवलयिनो भुवो विभागा। लक्ष्मण अयमार्यो हनुमानः सीता एष चिरनिर्विण जीवलोक प्रत्योद्धारण गुरुपकारी महानुभावतो भावो मारुतिः। राम महारानी यह सरोवर अत्यंत रमणीय है। इस सरोवर में मस्ती के कारण अव्यक्त एवं मधुर ध्वनि करने वाले मल्लिकाओं एक प्रकार के हंसों के पंखों से कपाए गए हिलते हुए बड़े नालों वाले श्वेत कमलों से युक्त भूभाग मेरे द्वारा अश्रु जल के गिरने और पुनः निकलने के बीच वाले समय में देखे गए थे। लक्ष्मण यह अत्यंत आदरणीय हनुमान है। सीता वह बहुत दिनों से दुखित प्राणी समूह के उद्धार करने से महान उपकारी तथा महाप्रभावशाली वायुपुत्र हनुमान है। अन्वय एतस्मिन् मदकल कल्लिकाक्ष पक्ष व्याधृत स्फुरद उरुंडम पुंडरीकाः कुवलयिनः भुवः विभागाः मया वाष्पाम्भ परिपतनोद्गमनान्तरे गमनांतरालो असंदृष्टा। शब्दार्थ एतस्मिन् इस सरोवर में मदकल मलिकाक्ष पक्ष व्याधृत स्फुरद उरुदंड पुंडरीका मस्ती के कारण अव्यक्त एवं मधुर ध्वनि करने वाले मल्लिकाओं एक प्रकार के हंसों के पंखों से कपाए गए अतः हिलते हुए बड़े नालों वाले श्वेत कमलों से युक्त कुवलयिन कमलों वाले भुवः पृथ्वी के विभागाः प्रदेश भूभाग मया मेरे द्वारा वाष्पाम्भ परिपतनोद्गमनान्तरे तराले अश्रु जल के गिरने और निकलने के बीच वाले समय में संदृष्टाः देखे गए थे। टीका एतस्मिन् चित्रे निर्दिश्यमाने पंपासरसि मदकले इत्यादि मदेन हर्षेण उदम यौवन जनितेन हर्षेण इति भावः कलाः मधुरम स्फुटञ्च शब्दं कुर्वन्तः ये मल्लिकाङ्क्षायाः धवलदेहा मल्लिन चक्षुञ्चरण राजहंसास्तेषां पक्षैः पतत्रैह व्याधृता विकम्पिता अत एव स्फुरन्त चञ्चलाः उरवः विशालाः दण्डामृडालाः एषां तानि तथोक्तानि पुण्डरीकाणि श्वेतोत्फलानि येषु तथोक्ताः कुवला इनः मुद्कुमुन्दतः नीलोत्पलबहुलाः वा भुवः पथि पृथिव्याः विभागाः प्रदेशाः मयेति शेषः वाष्प इत्यादि वाष्पादं श्याम अश्रु जलायाम अश्रुनाम इत्यर्थः परिपतनम् निःशेषेण भूप्राप्तिः उद्गमनश्च उत्पत्तिश्च तयोः अन्तरकाले अन्तराले मध्ये सन्दृष्टाः अवलोकिताः तव विरहे दुषहम् पम्पाशरो विलोक्य विहवलेन मया भृशम् प्ररोदितम् इति भावः अत्र प्रहर्षिणि छन्दः टिप्पणी मलिकाक्षाः मलिकाक्ष हंसों की वह जाति है जिनका शरीर श्वेत तथा चोंच एवं पैर मटमैले होते हैं। विभागाः संसृष्टाः संदृष्टाः सीता के विरह में बिहवल राम उद्दीपक पंपासर को देखकर और अधिक बिहवल हो उठे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा उमर पड़ी, अतः वे सरोवर के सौंदर्य को पूर्णतया नहीं देख पाते थे। आंसुओं के गिरने से और निकलने के बीच में जितना समय मिलता था उतने ही समय में वे सरोवर को के सौंदर्य देख सकते थे। यही भाव यहाँ अभिव्यक्त किया गया है, किंतु कतिपय टीकाकारों ने शब्दों का खींचातानी करके इसके कई कई अर्थ किए हैं, किंतु वे बौद्धिक व्यायाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त छंद का नाम है प्रहर्षणी। छंद का लक्षण है त्रयासाह भीर्मनजरगाह प्रहर्षणी। शब्दार्थ आर्यः अत्यंत आदरणीय चिरम निर्विणाम जीवलोक प्रत्युद्धरण गुरुपकारी बहुत दिनों से दुखित प्राणी समूह के उद्धार करने से महान उपकारी महानुभाव महान प्रभावशाली। टीका लक्ष्मण इति आर्यः अत्यंतम आदरणीय चीर निवेणेति चिरं बहुकालं व्याप्य निर्विणस्य दुखितस्य जीवलोकस्य प्राणीसमूहस्य सर्वेषां जीवनामित्यर्थः प्रत्युद्धरणात् शोकापनयनात् गुरुपकारी महोपकारी महानुभावः महाशयो महाप्रभावो वेति। टिप्पणी आर्यः शंकर के अंश से उत्पन्न होने के कारण तथा महान उपकार करने के कारण भी हनुमान को वार्य कहा गया है। हनुमान थूडी अर्थात हनु की अत्यंत दृढ़ता एवं विशालता के कारण इनका यह नाम पड़ा था। हनुमान हरस्व उकार भी है। चीर निर्विणेति दुखी एवं विपत्तिग्रस्त व्यक्तियों की भलाई करना ही हनुमान का बहुत दिनों से कार्य रहा है। उन्होंने बाली एवं रावण के द्वारा सताए गए क्रमशः सुग्रीव और सीता का उद्धार किया था। वस्तुतः इन शब्दों से सीता ने अपने ही उद्धार की ओर संकेत किया है। श्लोक नंबर 32 पृष्ठ संख्या 76। दृष्टयासो वयम् महाबाहो रंजनानंद वर्धन यस्य वीर्येण कीर्तिनो वयम् च भुवनानि च। सीता वत्स एष कुसुमित कदम्बा तड़ा ताल वितविवरहिणः किन्नामधेयोगी यत्रानुभाव सौभाग्यमात्र परिशेषः अधूषर श्रीमूर्च्छसत्त्वा प्ररोदितेनावलम्बितस्त तरुतल आर्यपुत्रः अलिखितः। राम सौभाग्य से यह वही विशाल बाहु अंजना के आनंद को बढ़ाने वाले हनुमान हैं, जिनके पराक्रम से संपूर्ण लोक और हम लोग भी कृतार्थ हैं। सीता, वत्स पुष्पित कदम वृक्षों पर तांडव नृत्य करते हुए मयूरों से युक्त यह किस नाम का पर्वत है, अर्थात इस पर्वत का क्या नाम है, जहाँ पर तेज के सौंदर्य मात्र से अवशिष्ट मटियाली शोभा वाले मूर्छित होते हुए रोते हुए तुम्हारे द्वारा संभाले गए आर्य पुत्र वृक्ष के नीचे चित्रित किए गए हैं। अन्वय, दृष्टया अयम सह महाबाहु अंजनानंदवर्धन अस्ति यस्य वीर्येण भुवनानि च वयम् च कृतिनः स्मः। शब्दार्थ, दृष्टया सौभाग्य से अयम यह सह वही महाबाहु विशाल बाहु अंजनानंदवर्धन अंजना के आनंद को बढ़ाने वाले अस्ति है, यस्य जिनके वीर्येण पराक्रम से भुवनानि संपूर्ण लोक च और वयम हम लोग च भी कृतिनः कृतार्थ स्म है। टीका, दृष्टेति दृष्टया सौभाग्येन अयम एषः चित्रे निर्दर्शना स स्वकर्मणा जगति सुविदितः महाबाहु अञ्जनानुलम्बितं भुज अञ्जनानन्दवर्धन अञ्जनायाः स्वमातुः आनन्दस्य सौक्षमस्य वर्धनः वर्धकः अस्तिति क्रियाविशेषः यस्य हनुमतः इत्यर्थः वीर्येण पराक्रमेण भुवनानि सर्वे लोकाः इत्यर्थः च यथा वयम् रघुवन् कुलान्वायाः इति यावत् च अपि कृतिनः कृतार्था उपकृता इत्यर्थः स्म इति शेषः। अत्रोदात्तलङ्कारः भृतं तु पत्थ्वाख्यात् वक्त्रम्। टिप्पणी, अञ्जनानन्दवर्धनम् हनुमान की माता का नाम अंजना सभी सुयोग्य पुत्रों माँ के आनंद को बढ़ाने वाले थे, अतः हनुमान भी अपनी माँ के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। इस श्लोक में उदात्त अलंकार तथा पथ्यावक्त्र छंद है। छंद का लक्षण, योश्चतुर्थो जेन पथ्यावक्त्रम प्रकृतितम। शब्दार्थ, सुकुमित कदम्ब ताड़वित वहिणः पुष्पित कदम वृक्षों पर तांडव नृत्य करते हुए मयूरों वालों वाला किन्नमाध्येय किस नाम वाला गिरि पर्वत अनुभव सौभाग्य मात्र परिशेष धूसर श्री तेज के सौंदर्य से अवशिष्ट मटियाली मटमैली धूमिला शोभा वाले आलम्बित सहारा दिए गए संभाले गए अलिखित चित्रित किए गए हैं।
टीका,
सीतेति कुसुमित इत्यादि कुसुमानि पुष्पाणि संजायत्यम स्मति कुसुमिता पुष्पितः ये कदम्बरत्वं कदम्बवृक्षाः तेषु तंडविता निर्तरं कुर्वन्तः ब्रह्मणः मयूराः मयूरो वरहिणो वरहि नीलकंठो भुजंगमक इत्यमरः यत्र स तादृशः किन्नमध्येय किमाख्यः गिरे पर्वतः अनुभाव इत्यादि अनुभावस्य प्रभावस्य तेजः इति यावत् यत् सौभाग्यम् सौन्दर्यम् समृद्धिरित्यर्थः तन्मात्रेण परिशेषा अवशिष्टा धूसरा किञ्चिनम् मलिना स्त्री शोभा वपुकान्तरित्यर्थः यस्य स तादृशः अवलम्बितः धारितः तदत्त सहायः अलिखितः चित्रितः। टिप्पणी, अनुभाग सौभाग्यः किञ्चित् धूमिल क्षण कांति वाले द्वितीय के चंद्र की अपनी एक शोभा होती है। ठीक यही बात रामचंद्र के विषय में भी यहाँ समझनी चाहिए। आलिखित आ प्लस लिख प्लस कत प्लस विभक्ति कार्यम। श्लोक नंबर 33 पृष्ठ संख्या 78। लक्ष्मण, सो अयम शैल ककु भसूर भीरमाल्यवनामयस्मि निल्लह स्निग्धा श्रयति शिखरम नूतनस्तो यवाह आर्येणास्मिन रामः बिरम बिरमातः परम न क्षमोऽस्मि प्रत्यावृतः स पुनरिव मे जानकी विप्रयोगाः। लक्ष्मण, अत परमार्यस्य तत्र भवताम कपि राक्षसानाम चापरी संख्यान न्यूतरोत् उत्तराणि कर्माश्चर्याणि परिश्रांता चेयर्म आर्या तद्विज्ञापयामि विश्राम्यतम इति। सीता आर्यपुत्र एतेन चित्र दर्शनेन प्रत्युत्पन्न दोहादाय मम विज्ञापनामस्ति श्रीराम नन्वाज्ञापय सीता जाने पुनरपि प्रसन्न गंभीरासु बान वनराजिषु बृहत्यर्थ पवित्र निर्मलम शिशिर सलीलाम भगवतीम भागीरथीम अवाह गहिष्य इति राम वत्स लक्ष्मणः लक्ष्मण एषो अस्मि वत्स अचिरादेव संपादनीयो वस्या दोहद इति संप्रत्येव गुरुभिः संदिष्टम तस्खल खलित सुख संपातम रथम उपस्थापय सीता आर्यपुत्रः उस्मारिब्ब अप्यांगन्तव्यम् राम अति कठिन हृदये एतदपि वक्तव्यम् सीता तेन हि प्रियं मे यदा ज्ञापयत्यार्यः ब्रगटिति निष्क्रान्तः ब्रगटबन् रामः प्रियेवाताय नोपकण्ठे संविष्टा भवः सीता एवं भवतु अपहतास्मि परिश्रमनं निद्रया लक्ष्मण यह वही अर्जुन वृक्ष की फूलों की सुगंधित माल्यवान नामक पर्वत है जहाँ पर नीला चिकना एवं नवीन मेघ शिखर पर ठहरता है अर्थात आश्रय लेता है आर्य के द्वारा यहाँ पर बात करती है राम वत्स रुको रुको इससे अधिक सुनने में समर्थ नहीं हूँ मेरा वह सीता का वियोग फिर से लौट आया ऐसा आया है लक्ष्मण इसके बाद आर्य अर्थात आपके तथा अत्यंत आदरणीय बंदरों और राक्षसों के क्रमशः अधिक आश्चर्य जनक कर्म है यह पूजनीय सीता थक गई है अतः निवेदन करता हूँ कि विश्राम किया जाए सीता आर्य पुत्र इस चित्र दर्शन से उत्पन्न हुई गर्भिणी की अभिलाषा वाला मेरा कुछ निवेदन है अर्थात चित्र दर्शन से मेरे मन में एक अभिलाषा उत्पन्न हुई अतः निवेदन कर रही हूँ राम अवश्य आज्ञा है सीता सोचती हूँ कि फिर शांत तथा घना वन श्रावणयो में बिहार कर पावन निर्मल और शीतल जल वाली भगवती गंगा में गोते लगाऊं राम लघु बंधु लक्ष्मण मैं यह उपस्थित हूँ राम वत्स शीघ्र ही पूरी करनी चाहिए इनकी अभिलाषा ऐसा अभी अभी गुरुजनों ने संदेश भेजा है अतः अबाद यह सुन सुख कर गति से चलने वाले रथ को उपस्थित करो सीता आर्यपुत्र आपको भी आना चाहिए राम हे अत्यंत कठोर हृदय वाली क्या यह भी कहने की बात है अर्थात मैं वहाँ अवश्य आऊंगा सीता तो मेरे लिए अच्छा है ब्रैकेट अर्थात तब तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है लक्ष्मण जैसी आर्य आज्ञा दे रहे हैं वैसा ही करता हूँ ऐसा कहकर निकल गए राम प्रिय खिड़की के पास लेट जाओ सीता ऐसा ही हो अर्थात ठीक है मैं परिश्रम के कारण आई हुई निद्रा के द्वारा अभिभूत कर ली गई हूँ अन्वय अयम सह कुकुंभ सुरभि माल्यवान नाम शैलः यस्मिन् नीलः स्निग्धः नूतनः तोयवाह शिखरम श्रयति यारेण अस्मिन् वत्सः विरम विरम अतः परम श्रोतुम् क्षमः न अस्मि मे सह जानकी विप्रयोगः पुनः पुनः प्रत्यावृतः इव शब्दार्थ अयम् यह सह वही ककुब सुरभि अर्जुन वृक्ष के फूलों से सुगंधित माल्यवान नामक शैलः पर्वत अस्ति है यस्मिन् जहाँ पर नीलः नीला स्निग्धः चिकना नूतनः नवीन तोयवाह मेघ शिखरम शिखर पर श्रीश्रयति ठहरता है और उतरता है अरियेण आर्य के द्वारा अस्मिन् यहाँ पर वत्स वत्स लघु बंधु विरम रुको अतः इससे परम अधिक श्रोतुम सुनने में क्षमा समर्थ न नहीं अस्मि हूँ मैं मेरा सह वह जानकी विप्रयोगा सीता का वियोग पुनः फिर से प्रत्यावृत इव लौट सा आया है टीका सोयम इति अयम एषः भवत्या पृष्टः इत्यर्थ सः पूर्व परिचितः ककुभसूरभिः कुकुम्भानाम् अर्जुन वृक्षाणाम् विकाराः कुकुभानि अर्जुन पुष्पाणि इदम् ककुभो अर्जुनः इत्यमरः तैः सुरभिः सुगन्ध बहुलः मल्यवान नाम इन्द्र मल्यवान संज्ञकः नीलः पर्वतः अस्तीति क्रियाशेषः यस्मिन् यत्र पर्वते नीलः अनिलवर्णः स्निग्धः शीतलः विद्युत ललित लतिकाभिः समाश्लिष्टत्वात् मर्श्रीणच्च नूतनः नवीनः श्रितौ प्रथमोदितः इत्यर्थः तोयवाः मेघ शिखरम् श्रृङ्गः श्रयति अवलम्बते अनेन तच्छोयता सुच्छिता आर्येण पूजनेन रामेण इत्यर्थः अस्मिन् एतस्मिन् पर्वते इत्येक्तावत्येव प्रोक्ते रामो वदति विरम विरमेति वत्स हे प्रिय लक्ष्मण चिरम विरम अग्ने कथनात् निवृति भव अग्नहितास् अतिशये द्विप्सायाम् द्विरुक्ति अतः अस्मात् परम् अधिकम् श्रोतुम् इति शेषः क्षमः समर्थम् समर्थ मुह न न अस्मिन् वर्तते मे मम सह पूर्वानुभूत जानकी विप्रयोगाः जानकी विरह पुनः मुह प्रत्यावृतः इव प्रत्यागत इव एतत् सर्व दृष्टया श्रोत्वा च पुनरानुभूत जानकी विरहजम् दुःखम् मे हदि पूर्ववेदनाम् जनयतवेति भावः अत्रोत्प्रेक्षालङ्कारः मन्दाक्रान्त छन्दः टिप्पणी माल्यवान् सम्भवतः यः पर्वत किष्किन्धा के समीपे ही स्थित था एवं प्रस्त्रवण पर्वत श्रेणी का एक भाग था। यहाँ पहुंचकर राम का सीता विषयक शोक असह्य हो उठा था कि देखिए राम किष्किन्धा कांड रामायण किष्किन्धा कांड 27-11-32 तथा रघुवंश 13-26-29 स्निग्ध स्नेह प्लस कृत प्लस विभक्ति कार्यम आर्यण अस्मिन आगे लक्ष्मण इस पर्वत पर घटित राम की विरहावस्था की घटनाओं का वर्णन करना चाहते थे अतः असहा होने के कारण राम ने उन्हें रोक दिया। इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार तथा मदाक्रांता छंद है। छंद का लक्षण मंदाक्रांता अम्बु धीर शनक गैरमो भनौ तौ गम्यु ममम शब्दार्थ तत्र भवताम अत्यंत आदरणीय अपरिसंख्यानी अगणित उत्तरोत्तराणी क्रमशः अधिक उत्कृष्ट कर्माश्चयाणी अद्भुत कर्म परिश्रांता थक गई प्रयुत्पन्न सोदाहरणम उत्पन्न हुई अभिलाषाओं वाली उत्पन्न हुई गर्भिणी की अभिलाषा वाली विज्ञापनियम निवेदन टीका लक्ष्मणीति तत्र भवताम पूजनयानाम अपरिसंख्यानानि असंख्यानानि उत्तरोत्तराणि उतरेभ्य पश्चादि घटितेभ्य उत्कृष्टेभ्यो वा उतराणि उत्कृष्टानि परम परम प्रकर्षम आद्य पानीत्यर्थ कर्माश्चर्याणि कर्मणाम कृत्यानाम आश्चर्याणि आद्वभूतानि अथवा कर्मणान कर्मणि विरोचितानि एव आश्चर्याणि अद्भुत कर्मण इत्यर्थ परिश्रांता क्लांता प्रत्युत्पनोदाहराय प्रत्युन संजातः दोहदः मनोरथो परभिरभिलाषो वा अस्याः तथा भूतायाः मे मम सीतायाः विज्ञापनीयम् निवेदनीयम् चित्रदर्शनेन मम मनस को अभिलाषो संजातः अतस्तत् पूरयितुम् भवतम् निवेदयाम इत्यर्थ अभिप्रायः टिप्पणी प्रत्युपन दोहादाय उत्पन्न हो गई है इच्छा या गर्भिणी की इच्छा जिसकी जब स्त्रियों को गर्भ रहा जाता है उस समय उन्हें चित्रित विचित्र विचित्र खाने तथा देखने की इच्छाएं उत्पन्न होती हुआ करती है। इसी प्रकार की इच्छा को दोहद कहते हैं केवल इच्छा को भी दोहद कहते हैं। विज्ञापनियम निवेदन वी प्लस ज्ञा प्लस रिच प्लस अनियर प्लस विभक्ति कार्यम आज्ञापय आज्ञा कीजिए राम का यह कथन सीता के प्रति उनका आदर भाव सूचित कर रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि ऋषि श्रृंग के आश्रम से गुरुजनों ने सीता के किसी भी दोहद को दुखद तुरंत पूरा करने के आदेश भेजा है। अतः सीता का दुहत संबंधी निवेदन राम के लिए आदेश के समान है। शब्दार्थ शांत अर्थात भय रहित अथवा तथा घनी वनराजीषु वन श्रेणियों में पवित्र निर्मल शिशिर सलिताम पावन निर्मल और शीतल जल वाली भगीरथीन गंगा में। टीका ज्ञाने पुनरप्पिति प्रसन्न गंभीरासु प्रसन्ना शांता हिन्नैः विरही तत्वात् चेतः प्रसाद करियः गंभीराः लतापाद पादी विगैनाम तथा भूतासु बानराजिषु विथिषु पवित्रेत्यादि पवित्रम पावनम निर्मलम स्वच्छम शिशिरच्च शीतलश्च सलीलम जलम यस्याः यस्याम वाताम तादृशीम भागीरथीम गंगाम। टिप्पणी भृत्य विहार करके वी प्लस ह प्लस लेप प्लस विभक्ति कार्यम अवगाहित से अव प्लस गाह प्लस लट प्लस उत्तम पुरुषे एक वचनम। शब्दार्थ अचिरात शीघ्र दोहद अभिलाषा गर्भवती की अभिलाषा अशक अस्खलित सुख संपातम अबाध तथा सुनकर गति वाले गिट्टिका राम इति अचिरात शीघ्रम दोहदः गर्भिणम अभिलाषः अस्खलित सुख संपातम अस्खलितः गात्र संचरण भ्रंसादिरहित इत्यर्थः अप्रतिघातः इति यावत् सुख सुखजनकः संपातः गमनम यस्य तथाविधम रथम इत्यस्य विशेषणम। टिप्पणी अस्खलित सुखम संपातम रामचंद्र एक ऐसे रथ को लाने के आदेश दे रहे हैं जो ऊंची नीची तथा उबड़ खाबड़ जमीन पर भी न उछले न कूदे। जो रथ न उछले और न कूदे वह तो सुखदायक होता ही है। पूर्ण गर्भा सीता के लिए ऐसा ही रथ होना उचित था। उपस्थापय उप प्लस स्था प्लस ऋच प्लस लोट प्लस मध्यम पुरुष वचनम वक्तव्यम वच प्लस तब्यत प्लस विभक्ति कार्यम। शब्दार्थ वातायनो कंठे खिड़की के पास अपहता अपहरण की गई हुई अभिभूत कर ली गई है। परिश्रमा निद्रया परिश्रम के कारण आई हुई निद्रा के द्वारा निरंतरम गाढ़ रूप में से कम कर आलम्ब सहारा ले लो पकड़ो। टीका राम इति वातायनोपकंठे वातस्य वायुः अनयम् आगमनम् येन यस्मात् वा तथाभूतम् यत् वातायनम् गवाक्षम् तस्य उपकंठे समीपम् अपहता अभिभूता परिश्रम निद्रया परिश्रमम् जितेन स्वप्पेन निरन्तरम् निर्नास्ति अनन्तरम् अवकाशो यस्मिन् तद्यथा यथा गाढ़म् इत्यर्थः स्वस्तमाश्लिष्ट। टिप्पणी संविष्टा सम प्लस विष प्लस कर्तरी कतः प्लस टाप प्लस विभक्ति कार्यम। परिश्रम निद्रया सीता जी का गर्भ प्रायः पूरा हो चुका है। वे स्वल्प परिश्रम मात्र से थक जाती है। उन्हें सो जाने के की अनिवार्य इच्छा होती है। प्रत्येक स्त्री की पूर्ण गर्भा हो जाने पर यही अवस्था होती है।
श्लोक नंबर 34 पृष्ठ संख्या 82
राम
तेन ही निरंतरम अवलंबस्व मामत्र शयनाय जीवयन्नीव शस्याध्यवश्रमस्व वेदविन्दुर अधिकंठम अर्प्यताम बाहुरनन्द मयुख चुंबितस्यम यन्दि चंद्रमणिहार विभ्रमः तथा कारणयन् सानंदनम प्रिये किमेतत। तो यहाँ सोने के लिए कसकर मेरा सहारा ले लू। भय और थकावट के कारण पसीने की बूंदों से युक्त चंद्रमा की किरणों से स्पष्ट अतः पिघलने वाले चंद्रकांत मणि के हार की शोभा वाली ब्रकेट अर्थात हार के तुल्य विलास वाली ब्रकेट बंद मुझे जीवित करती हुई सी अपनी यह भुजा मेरे गले में डाल दो। वैसा करवाते हुए आनंद से प्रिय यह क्या बात है। अन्वय सासाध्य श्रमस्वेद बिंदु एन्दवय मयूखचुंबितस्यम अंद्रिचंद्रमणिहार विभ्रम जीवयन इव बाहुअधिकंठम मर्यताम। शब्दार्थ ससाध्वस श्रमस्वेद बिंदु भय और थकावट के कारण पसीने की बूंदों से युक्त इन्देव मुखम चुंबितम श्यानंदी चंद्रमणिहार विभ्रमः चंद्रमा की किरणों से स्पष्ट अतः पिघलने वाले चंद्रकांत मणि के हार की शोभा वाली
जीवयन इव जीवित करती हुई सी बाहु भुजा अधिकंठम मेरे गले में अर्प्यताम डाल दो। टीका जीवन्यवेति ससाध्यवेत्यादि साधु अत्यधिकम अस्यति विपक्षपति मनः चेतः इति साध्यस्वम भयम् दत्रासौ भीतिर्भिः साध्वंसभयम् श्रमः खेदश्चेति साध्वश्रमः ताभ्याम् जनिताः ये सब स्वेदः बिन्दवः धर्मबिन्दवः तैः सहितः अत्र आलेख्यगत सुप्रणखा आदिदर्शनोद्भूतम् साध्वंस श्रमश्च चित्रदर्शनयोगेयम् एनन्द्वैत्यादिः इन्द्रो चन्द्रस्य इमे इन्दवा चन्द्रसम्बन्धिनः एमयूखाः किरणाः तैः चुम्बितः स्पृष्टः अत एव स्यन्दते स्त्वन्तीति स्यन्दि यदश्च चन्द्रमणिहारः चन्द्रकान्तमणिमाला तस्य बिभ्रमः विलास इव बिभ्रमो यस्य सः नाजीवत्तीति प्राणयतीति तादृशैव बाहु स्वयभुजलता अधिकंठम मम कंठे अर्प्यताम स्थाप्यम इत्यर्थः अत्र निदर्शनं इत्योप्रेक्षयोः संसृष्टिः रथ्योद्धता वृतम। टिप्पणी यह श्लोक मालती माधव में भी है। जीवयन जीव प्लस ऋच प्लस सत्री प्लस विभक्ति कार्यम इंदवमय युख जब चंद्रमा की किरणें चंद्रकांत मणि के ऊपर पड़ती है उस समय उसे चंद्रकांत मणि से बूंदे टपकने लगती है। इस श्लोक में निदर्शन अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की संसृष्टि है। इसमें प्रयुक्त छंद का नाम है रथोद्यथा छंद का लक्षण रात्र पनैह नर गलैह रथोद्यथा। श्लोक नंबर 35 पृष्ठ संख्या 84। विनिश्चयेतु शक्यो न सुखम मिति न दुखम मिति वा प्रमोहो मूर्धा निद्रा वा किमु विषम विसर्पः किम् मोद्मदः तव स्पर्शे स्पर्शे मम हि परिमूढेन्द्रियगणो विकारश्चैतन्यम् भ्रमयति च समेलयति च। सीता स्थिर प्रसादा युवम् मेत इता इदानीकिम् परम्। हिंदी यह विकार सुख है अथवा दुख है मूर्छा है या निद अथवा क्या यह विष का प्रसार है या उन्माद ऐसा निश्चय करना संभव नहीं है क्योंकि तुम्हारे स्पर्श पर इंद्रिय समूह को निश्चेष्ट बना देने वाले विकार मेरी चेतना को भ्रांत बना रहा है और प्रायः इसे नष्ट सा कर दे रहा है। सीता आप मेरे प्रति अचल अनुग्रह वाले हैं अर्थात आपका मेरे प्रति जैसा अनुग्रह अनुराग विराग का समय था वैसा ही अब भी है। अब इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए। अन्वय सुखम इति वा दुखम इति वा प्रमोह वा निद्रायस्ति किमु विसर्पः किमु मदः वर्तते इति विनिश्चेतुम् न शक्यः हि तव स्पर्शे स्पर्शे परिमूढेन्द्रियगणः विकारः मम चैतन्यम् भर्मयति च सम्मिलयति च। पदार्थ सुखम इति सुख है वा अथवा दुखम इति दुख है वा अथवा प्रमोह मूर्छा वा अथवा या निद्रा अस्ति है किमु क्या विष विसर्पः विष का प्रसार किमु क्या मदः उन्माद या मद वर्तते है इति यह विनिश्चय तुम विनिश्चय करना न नहीं शक्य संभव है ही क्योंकि तब तुम्हारे स्पर्शे स्पर्श पर स्पर्शे स्पर्श पर परिमूढ़ेन्द्रिय गण निश्चेष्ट बना दिया है अर्थात अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ बना दिया है। इंद्रिय समूह को जिसने ऐसा अर्थात इंद्रिय समूह को निश्चेष्ट बना देने वाला विकार विकार चित्त की एक विशेष अवस्था मम मेरी चैतन्यम चैतन्य चेतन को भ्रमयति भ्रांत बना रहा है च और सम्मिलयति ढक दे रहा है प्रायः नष्ट सा कर दे रहा है च भी। टीका विनिश्चये तुमिति सुखमिति सुखरूपेण वा अथवा दुखमिति दुखरूपेण वा प्रमोह मूर्छा वा निद्रा
सुखम सुप्तावस्था अस्तिति श्रियाशेषः किमु किम विषय विसर्पः विषस्य परलस्य विसर्पः प्रसारः किमु मद उन्मादो मदो वा किम वर्तते आस्ते इति इत्थं विनिश्चयितुम् अवधारयितुम् न शक्यः न संभाव्यते अवधारण शक्यतौ हेतुम् आह इति हानि यतः भवत्या स्पर्शे प्रतिस्पर्शम् स्पर्शे स्पर्शे प्रतिस्पर्शम् परिमूढेन्द्रियगणः परिमूढः परितः मूढः विषयग्रहणाः समर्थत्वात् मोह उपागतः इन्द्रियाणाम् चक्षुरादिनाम् गणः समूहो यस्मिन् स तादृशी विकारः अन्तरावस्था विकृतिरैति शेषः मम रामस्य इत्यर्थः चैतन्यम् चेतनाम् भ्रमयति गुरुणयति भ्रान्तम् करोतीत्यर्थः च यथा सम्मीलयति तिरोधाद्धाति अपि च तव स्पर्शनानन्दम् प्राप्य ममान्तः करणस्य अनिर्वचनीयम् यास्तव अभिप्रायः अत्र सन्देहदीपकयो शङ्करालङ्कारः शिखारिणी छन्दः टिप्पणी विनिश्चयेतुम् निश्चय करना निर्णय करना विपलस निष्पलस चीपलस तुमुन पलस विभक्ति कार्यम् चैतन्यम् चेतना एवं चैतन्य चेतना प्लस स्वार्थे प्लस निश्चय प्लस विभक्ति कार्यम् परिमूढेन्द्रियगणः यह विकार का विशेषण है। सीता का प्रत्येक स्पर्श राम को आनंद के सागर में डुबो देता है। उस अवस्था में सारी ज्ञानेन्द्रिय जड़सी हो जाती है, अपना अपना कार्य छोड़कर निश्चेष्ट सी हो जाती है। फिर तो वह विकार कैसा है यह निश्चय करना कठिन है। श्लोक की प्रथम दो पक्तियों में संदेह अलंकार तथा विकार एवं चैतन्य का दो भी क्रियाओं में संबंध होने से दीपक अलंकार होता है हुआ है। इस प्रकार यह संदेह एवं दीपक का शंकर अलंकार है। श्लोक में प्रयुक्त छंद है शिखारिणी। छंद का लक्षण रसई हरुद्रक्षिणा यमन संभला गह शिखारिणी शब्दार्थ स्थिर प्रसादा अचल अनुग्रह वाले सर्वदा समान प्रतीति वाले इतः इससे अधिक ऊपर अपरम और दूसरा टीका सीतेति स्थिर प्रसाद स्थिर अचल प्रसाद अनुग्रह एसाम तादृशा युवम इतः अस्मात् परम अधिकम अन्यदा विवाह कालाद्वराभ्याम याद्वा पर्यन्तम् मयि भवता अनुग्रह अनुराग समान एव अतोस्मस्ताधिकम् संतोषप्रदम् मम हि भविष्यन्ति। टिप्पणी स्थिर प्रसादा प्रायः देखा जाता है कि नवपरिणति दंपति में बहुत अधिक प्रेम होता है, परंतु यह प्रेम कालक्रम के अनुसार सनैह सनैह शिथिल पड़ता जाता है। यहाँ सीता को प्रसन्नता इसकी है कि उनके ऊपर राम का प्रेम अब तक अपरिवर्तित रहा है। स्त्री के लिए इससे अधिक सौभाग्य की बात भला और क्या हो सकती है। राम श्लोक नंबर 36 पृष्ठ संख्या 86 मलानस्य जीवकुसुमस्य विकासनानि संतर्पणानि सकलेशेन्द्रियं मोहनानि एतानि ते सुवचनानि सुरोहरुक्षी कर्णामृतानि मनसश्च रसायनानि सीता प्रियंबदः एहि संविवाशावः ब्रैकेट इति सायनाय सामन्तो निरूपयति ब्रैकेट बंद राम अयि किमन्वेष्टव्यम् हिंदी राम हे कमल लोचने तुम्हारे ये मधुर वचन मुरझाए हुए जीवन रूपी पुष्प को विकसित करने वाले भली भांति तृप्त करने वाले सकल इंद्रियों को मुग्ध करने वाले कानों के लिए अमृत और मन के लिए रसायन पुष्टिकरण औषध है। सीता प्रियवादिन हम दोनों लेते ऐसा कहकर शयन करने के लिए चारों ओर देखती है। राम हे प्रिय क्या ढकने की आवश्यकता है अर्थात ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अन्वय हे सरोरुहाक्षी तेतानि सुवचनानि मलानस्य जीवकुसुमस्य विकासनानि संतर्पणानि सकलेन्द्रिय मोहनानि कर्णा मृतानि च मनसः रसायनानि पदार्थ हे सरोरुहाक्ष बराबर हे कमल लोचने ते तुम्हारे एतानी ये सुवचनानी मधुर वचन मलानस्य मुरझाए हुए जीव कुमस्य जीवन रूपी पुष्प को विकासनानी विकसित करने वाले संतर्पणानी भली भांति तृप्त करने वाले सकल इंद्रिय मोहनानी सकल इंद्रियों को मुग्ध करने वाले कर्णामृतानी कानों के लिए अमृत रूप मानसह मन के लिए रसायनानी रसायन अर्थात पुष्टिकारक औषध संति है। टीका मलानस्य इति हे सरोरुहाक्षी सरोरुहे कमले इव अक्षिणी लोचने यस्याः सा सरोरुहाक्षी तत्संबुधौ हे सरोरुहाक्षी हे विकसित सतपत्रालय लोचने ते तव एतानि सद्य एव त्वयोहदि इत्यादितानि सुवचनानि सुभाषितानि मलानस्य संसारः तापसंसर्गात् ग्लानिमानस्य जीवकुसुमस्य जीवः जीवनं तदेव कुसुमं पुष्पं तस्य विकासनानि विकाससज्जनकानि हर्षोत्पादकनम् इत्यर्थः संतर्पणानि तृप्तिजनकानि भोग्यन्तराकांक्षणा चाक्षु अनुत्पादः कानिति भावः। अतः सकलेन्द्रियादिनि सकलानां सर्वेषाम् इन्द्रियाणां मोहनानि मोहजनकानि स्वस्य स्वस्व व्यापार निरोध इत्यर्थः करणामृतानि करणयोः श्रोतयोः मृतानि अमृतानि सुखप्रदानि च तथा मनसः चेतसः रसायनानि रसस्य वीर्यस्य अन्ययानि अयनानि आदनानि तुष्टीकराणि औषधीन इत्यर्थः संतिति क्रियाशेषः तव सुवचनं मम प्राणसर्वस्वम् इत्यर्थ अभिप्रायः। अत्र रूपकमलं अंक रूपक अलंकारः सॉरी अत्र रूपकम् अलंकारः वसंतालिका छन्दः च टिप्पणी मलानस्य संसारिक झंझटोसे मलिन दुखी मलैः हर्षक्षय कत प्लस विभक्ताधिकार्यम् विकासनानि विकसित करने वाले खिलाने वाले वी प्लस कस प्लस रिच प्लस ल्यूट कर्तरी प्लस विभक्ति कार्यम रसायनानी वृद्धावस्था का तथा व्याधि के विनाशक औषधि को रसायन कहते हैं। यज्जरा व्याधि विध्वंससी भेषजम तद्रसायनम चरकः रस शब्द का अर्थ होता है पारद एवं आयुर्वेद के अनुसार शुद्ध किया गया पारद औषध रूप में आयुर्वर्धक है। यहाँ सीता के वचनों पर रसायन का तथा जीव पर कुसुम का आरोप करने से रूपक अलंकार है। इसमें प्रयुक्त छंद का नाम वसंतालिका है। छंद का लक्षण उक्ता वसंतालिका तमजा जगौगह पदार्थ क्यंबदह प्रियवादिन मीठे वचन बोलने वाले संविसावह हम लोग लेते समंततः चारों ओर निरूपति देखती है अन्वेष्टव्यम खोजना है खोजने की आवश्यकता है। टीका सीतेति प्रियं वद प्रियं वदति प्रियं वदस्तत् संबुद्धौ संविसावह शेषेवहे समंततः परितः निरूपति अवलोकयति अन्वेष्टव्यम गवेषणीयम् अन्वेषणस्य नास्त्यस्य आवश्यकतिति भावः। टिप्पणी निरूपयति सीता शयन करना चाहती थी अतः उन्हें एक तकिया उपधान की आवश्यकता थी उसी के लिए उन्हें इधर उधर दृष्टि दौड़ाई है। अन्वेष्टम राम के पूछने का अभिप्राय यह है कि क्या तुम्हारे लिए तकिया खोजने की आवश्यकता है अर्थात नहीं क्योंकि वह तो तुम्हारे निकट ही है उसी के लिए आगे का श्लोक कह रहे हैं।